ओम शांति। आप में से कौन कौन है जो पहली बार ये सत्र अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम? ओह, फर्स्ट टाइम मतलब ये प्रेजेंटेशन 50% न्यू है ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं नहीं, परसों जो परसों हुआ था आपने, कौन कौन है जिन्होंने परसों का अटेंड किया था? हाथ हाँ, तो ऑलमोस्ट सब नहीं है। और कौन कौन है जो सबसे पहली बार अटेंड कर रहे हैं? पहली मतलब आज 50-50 है ऑलमोस्ट। हाँ, स्टार्टिंग से करूंगा लेकिन इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा रिकैप कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि 2 घंटे भी कम ही हैं, पर फिर भी जो है इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने वीडियोस भी रखे हैं, अब देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसे क्या है। और आप सिर्फ आज इतिहास देखने वाले नहीं लेकिन इतिहास का साक्षात्कार भी करने वाले हैं, इसलिए वीडियोज भी लेकर आए हैं। उसमें से जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनके वीडियोस आपको दिखाएंगे। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थोड़े ऑर्गेनाइज नहीं किए गए हैं क्योंकि द्वापर का अलग से हिस्ट्री है, कलयुग का अलग है, और हमने आपके लिए थोड़ा सा उसमें से कट करके रखा है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भले अगर आपको स्पष्ट समझ में ना भी आए तो उसमें कोई हरकत नहीं क्योंकि हम बोल करके या वीडियो के थ्रू आपको प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नहीं, अभी तो पहले तो अभी ये विषय ही अभी जस्ट नया, बिल्कुल ही न्यू विषय है। और एक चीज और आपको कहना चाहेंगे कि इसमें जो कुछ ऐसे ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो मैं समझता हूं शायद अब तक जो मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, ऐसे कुछ चीजें जो लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें उपलब्ध नहीं है। मैं थैंक्स बाबा को तो थैंक्स देना ही चाहूंगा लेकिन साथ में जगदीश भाई जी का भी बहुत थैंक्स है क्योंकि उनकी बुक्स भी इसमें काफी जो है मुझे हेल्पफुल रही चीजें आगे जो है रिसर्च करने में। और हमने एक छोटी सी एक बुकलेट तैयार की है ऐसे, अभी ये बुकलेट जो है अब तक पब्लिश नहीं कराई है, अभी एडिटिंग करना बाकी है, जिसमें पूरा द्वापर और कलयुग का इतिहास जो आवश्यक है वो इतिहास, वरना इतिहास तो अथाह है, लोग उसकी गहराई में चले जाते हैं और सार खो जाता है। तो जो रिलेवेंट चीजें हैं वो हमने इसमें कंपाइल की हुई है। और साथ में एक बुक लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट, जिसका नाम है गीता का भगवान कौन, जिसमें इतिहास के आधार पर बताया जाएगा कि कब कब कौन से युग में किन किन लोगों ने जो है गीता के भगवान का नाम चेंज करने की कोशिश की, कौन थे वो लोग और क्या क्या उस समय ऐतिहासिक सिचुएशंस या परिस्थितियां थी। उस पर हम अलग से अगली स्पार्क मीटिंग में हम ले सकते हैं सत्र अलग से केवल इसी के ऊपर, गीता का भगवान कौन, जिसमें ऐतिहासिक प्रूफ के थ्रू हम जो भी यहां पे बातें बता रहे हैं, जो जो बातें हम यहां पे बताने वाले हैं उसमें उन सब चीजों के प्रमाण ऑलरेडी हैं, लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, ऐसे नहीं कि यह मेरा रिसर्च है, मैं सिर्फ उसको मैंने कंपाइल किया हुआ है। और जहां पे मुझे लग रहा है कि मैं अपनी मन की बात बता रहा हूं वहां पे मैं बोल देता हूं कि हाँ ये मेरा ऐसा मानना है, है ना। तो जो जो चीजें बता रहे हैं उसके पीछे प्रमाण है, इस बात को जो है विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। तो बहुत सार में सारी बातें स्पष्ट करेंगे, तो फिर से शुरू करते हैं सत्र इतिहास का, स्टार्ट करें। यस, जैसे हमने कल देखा था इतिहास का मतलब ही होता है ऐसा ही हुआ, डज इट हैपेंड। इंग्लिश में इतिहास को हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री शब्द जो है इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी या रिसर्च। इतिहास का मतलब ही होता है रिसर्च या इंक्वायरी पास्ट की घटनाओं का। अभी आप में से सोच सकते हैं कि इतिहास का हमारे जीवन के साथ क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? तो संबंध नहीं, बहुत बड़ा और बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाबा की मुरलियों में हर मुरली में ड्रामा, चक्र, इतिहास, सतयुग, त्रेता, ये बातें बार बार आती है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। मैं समझता हूं मुझे 17 वर्ष हुए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन कुछ ही वर्षों में मुझे इतने वर्ष ज्ञान में चलने के बाद भी कुछ ही वर्षों के बाद ही मुझे क्लिक होना शुरू हुआ कि बाबा बार बार इतिहास को क्यों बार बार हाईलाइट करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो क्या वह रहस्य? फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, गौतम बुद्ध को संसार के आदिकाल के इतिहास का ज्ञान नहीं था। उन्होंने मानवता को क्या शिक्षा दी? संसार दुखमय है। अगर गौतम बुद्ध को मालूम होता कि संसार दुखमय नहीं है, इसके पहले सतयुग और त्रेतायुग जैसे बहुत समृद्ध और बहुत ही सुखकारी युग हुआ है, तो शायद वह एक विभिन्न दर्शन का प्रतिपादन करते। पर गौतम बुद्ध को संसार के आदिकाल का इतिहास का ज्ञान नहीं था। क्योंकि उन्होंने सोचा कि भला ऐसे दुख में संसार की रचना दया के सागर, प्रेम के सागर परमात्मा ऐसे दुख में संसार की रचना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध परमात्मा के विषय में मौन रहे। और फिर क्या हुआ, उन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा दी कि संसार दुख में है, संसार को छोड़ो और जंगल में जाने की शिक्षा दी, उससे कई लोग नास्तिक बने और बौद्धियों की संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, लेकिन कितने में है, करोड़ों में है। तो करोड़ों लोगों को जो है नास्तिकता उसमें फैली। कारण सिर्फ एक था, संसार के आदिकाल के इतिहास का ज्ञान नहीं था। कार्ल मार्क्स, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स कौन थे, साम्यवाद के जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, उनको भी संसार के आदिकाल का ज्ञान नहीं था। उन्होंने माना कि जीवन क्या है, संघर्ष है, आदिकाल से मनुष्य जो है संघर्ष करते आ रहा है। अगर उनको मालूम होता तो शायद वे विभिन्न दर्शन का प्रतिपादन करते। और आप देखेंगे मेजोरिटी देश में बुद्धिस्ट से भी ज्यादा कम्युनिस्ट हैं, रशिया हो गया और भी जो कंट्रीज हैं, और सभी के सभी लोग कौन है, नास्तिक, सिर्फ संसार के आदिकाल के इतिहास का ज्ञान न होने से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। बाबा मुरली में बार बार इसको हाईलाइट करते हैं, इतिहास के ज्ञान को। भारत में अंग्रेजों का राज था, लगभग 230 वर्ष के पहले मैंने बताया था कि कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी और सर विलियम जॉन्स सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, विलियम जॉन्स ने, और उन्होंने विद्वानों की मंडली बनाई। अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने आकर संस्कृत लर्न किया और भारत के गुरुकुलों में जा जाकर वो जो दुर्लभ पांडुलिपियां थी उसको उन्होंने एकत्रित किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। तब पाश्चात्य जगत के सामने आया कि भारतीय संस्कृति हमसे भी कहीं शिक्षित और हमसे भी कहीं महान है। उन्होंने पूरी इसकी सीरीज पे सीरीज वॉल्यूम्स पब्लिश कराए। जगदीश भाई ने भी वो वॉल्यूम्स रिफर की हुई हैं, विलियम जॉन्स की। ये एशियाटिक सोसाइटी की बिल्डिंग है, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की 1784 में। अब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो आपके सामने एक चित्र सामने आप देख रहे हैं। इस चित्र में चार युग दिखाए गए हैं, हम सब जानते ही हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन इस चित्र की विशेषता यह है कि इतिहासकारों के हिसाब से चित्र बनाया गया है जिसमें एडी और बीसी अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज किया गया है। इस चित्र को सारांश में हम समझाएंगे। इसमें यहां पे हम जो कैलेंडर यूज करते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर, जिसकी काउंटिंग क्राइस्ट से होती है। कल मैंने बताया था कि हम 2015 कहते हैं, इसका मतलब यह हुआ क्राइस्ट को आए हुए 2015 वर्ष हुए। तो यहां से काउंटिंग शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 करते करते अब 2015 में हम हैं। लेकिन क्राइस्ट के पहले की घटनाओं को हम ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और यहां पे चार्ट की विशेषता यह है, इसमें एडी और बीसी के हिसाब से दिखाया गया है और इसमें दो भक्तिकाल दिखाए गए हैं। एक भक्तिकाल ईसा पूर्व 300 से लेके ईसा पूर्व 700 तक है, टोटल ये 400 वर्ष का फेज है। इस 400 वर्ष के फेज में बड़े बड़े संत महात्मा नहीं लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि और प्रकांड विद्वान इस भारत भूमि पर और विदेशों में भी जन्म लेते हैं। उदाहरण के तौर पर महर्षि व्यास या जितने भी जो भारतीय के प्राचीन ऋषि, सोक्रेटिस, सुकरात, प्लेटो, ये सभी के सभी बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े प्रकांड विद्वान इस 400 वर्ष के फेज में जन्म लेते हैं। उनकी जन्म तिथियों की अगर डेट निकालेंगे ये 400 वर्ष के अंदर ही आएगा। जगदीश भाई ने भी इस बात को एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा में मेंशन किया हुआ है। ठीक वैसे ही कलयुग में करीबन 350 वर्ष का एक फेज है, ईसा पूर्व यहां दिखाया गया डेट 1320 से लेकर 1650 तक, ईसा के पश्चात, नॉट पूर्व, एडी, एनो डोमिनी। ये भी लगभग 350 वर्ष का फेज है जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं लेकिन भक्त आत्माएं, संत आत्माएं इस भारत भूमि में जन्म लेती हैं, जैसे मीरा, रैदास, कबीर, जो सारे जो संत महात्माएं जो हैं ये इस फेज में पैदा हुए हैं। तो ये दो भक्तिकाल का बहुत ही महत्व है। तीसरा, इस चक्र की एक और विशेषता है, कईयों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने त्रेतायुग में क्यों दिखाया गया, आप देख रहे हैं 200 वर्ष त्रेतायुग में जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के या सृष्टि चक्र के हर संगम पर कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो द्वापर और त्रेता के संगम पर भी ये घटनाएं घटित हुई और कलयुग और द्वापर के संगम पे भी हुई और द्वापर और त्रेता के संगम पे भी घटनाएं घटित हुई। इसलिए हमारे लिए ये फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास की। कॉलेजों में जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वह शुरू होता है बुद्ध काल के पहले वैदिक पीरियड और उसके पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, या जिसे लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पहले क्या था, अगर ये किसी से पूछा जाए तो हमारे इतिहासकारों के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं होता है, और वे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का सहारा लेते हैं जिसे हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, डार्विन ने जब ये थ्योरी दी थी कि मनुष्य पहले बंदर था, जब ये थ्योरी दी थी उसके पहले यूरोप में भी यही मान्यता थी कि सृष्टि चक्र अधिक से अधिक 5 या 6 हजार वर्षों का ही है, और इसके बाद पूरे वेस्टर्न जगत का जो है पूरी मान्यता ही बदल गई। युगों की आयु के बारे में हम एक अलग से सत्र रख सकते हैं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे सतयुग और त्रेता युग की। तो भारत, अभी प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले क्या था। तो भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद और पुराण हैं, उसमें बार बार सब जगह स्कैटर्ड है इन्फॉर्मेशन अबाउट सतयुग एंड त्रेता युग। डायरेक्टली सतयुग और त्रेता युग का नाम नहीं मेंशन किया गया, लेकिन बताया गया कहीं कहीं पे कि देव युग था, लोग बहुत सुखी थे, लोग निरोगी थे, कोई बीमारियां नहीं थी, उन्हें किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं थी। वायुपुराण अथर्ववेद कई संहिताओं में इस चीज का रेफरेंस है, लेकिन एक साथ लिखा नहीं है, लेकिन यहां वहां स्कैटर्ड है। तो भारत के जितने भी प्राचीन दर्शन शास्त्र हैं ये इस बात को कहीं ना कहीं मान्यता देते हैं कि बहुत पहले मानव सभ्यता, उसे हम देवयुग कहते थे, जिसे लोग सतयुग और त्रेता युग कहते हैं। अब मैं केवल भारतीय ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पाश्चात्य जगत में बाइबल और कुरान में भी ये मेंशन किया गया है। बाइबल में यहां तक लिखा गया है कि गॉड क्रिएटेड हेवन या गार्डन ऑफ एडन इन ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और पूर्व का मतलब होता है भारत देश, यहां तक मेंशन किया गया है। द वर्ल्ड वॉज गार्डन ऑफ रोजेस, बाइबल में क्लियरली मेंशन किया गया है। अब बाइबल में कहानी आती है एडम और ईव की। बहुत से लोगों ने ये एडम और ईव की कहानी सुनी होगी। आज हम थोड़ा सा एक वीडियो भी दिखाएंगे, शॉर्ट वीडियो ऑन एडम एंड ईव। जब कोई चीज बहुत पुरानी होती है तो लोग कहते हैं अरे कहां से तुम बाबा आदम के जमाने की चीज लेकर आ रहे हो, कहते हैं ना लोग। तो एडम, इंग्लिश में एडम कहते हैं और उर्दू वगैरह में लोग कहते हैं आदम। तो एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव, ब्रह्मा, मनु, सत्यव्रत, ये एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है, एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम। तो बाइबल और कुरान में ये कहानी आती है एडम और ईव की। बताते हैं कि भगवान ने जन्नत बनाई, हेवन बनाया, उन्होंने पहला पुरुष एडम को बनाया और ईव को बनाया। लेकिन भगवान ने उन्हें नग्न बनाया था और उन्हें ज्ञान नहीं था कि वे नग्न हैं। और भगवान ने कहा था तुम इस स्वर्ग का उपभोग करो, लेकिन एक वृक्ष पे फल है, इस फल को तुम मत खाना। अब बताते हैं कि उस वृक्ष पे एक सर्प रहता है। सर्प क्या करता है, ईव, एडम और ईव, जिसे बाबा मुरली में कहते हैं आदम बीवी या आदम और हवा उर्दू में कहते हैं। तो ईव को जो है क्या करता है, वह सर्प आकर्षित करता है, कहता है कि तुम ये फल खा लो जिससे तुम भगवान की गुलामी से मुक्त हो जाओगे। ईव उसके बाद में आ जाती है और एडम को फल खिला देती है, और बाद में उनको मालूम पड़ता है कि उनकी आंखें खुल गई हैं, उन्हें देह भान का ज्ञान हो जाता है, उन्हें शर्म आने लगती है, और तब भगवान को सारी चीजें मालूम पड़ जाती है और भगवान उनको स्वर्ग से निकाल देते हैं। ये अलंकारिक भाषा में कहानी बताई गई है देवी और देवता धर्म की, और इसमें ये बात प्रमाणित किया गया है कि कैसे वो फल कौन सा था, ज्ञान का फल नहीं, इस भान का फल कि स्त्री और पुरुष के ज्ञान का फल। जब उन्होंने खाया तो उनकी दृष्टि पतित हुई और सबसे पहला जो विकार इस दुनिया में प्रवेश किया वह था काम विकार। इसलिए आज भी बाबा ने मुरली में बार बार बीच में कहा। तो बाबा ऐसे ही किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े गहरे रहस्य होते हैं। तो छोटा सा कि हम वीडियो देखेंगे एडम और ईव का। एक और बात बताना चाहेंगे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दुनिया के हर प्राचीन ग्रंथ महाभारत, बाइबल और कुरान, उसमें सृष्टि की शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है कि संसार में पहले अंधेरा था और एक अंड या एक ज्योति प्रकट हुई और जिसने संसार की रचना प्रारंभ की। ये बड़े आश्चर्य की बात है। बाइबल में भी, कुरान में भी, महाभारत में भी और बहुत सारे ग्रंथों में बार बार शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन वो कौन सा अंधेरा था लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हैं हम छोटा सा एक वीडियो।
आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक शून्य था। ऐसे में एक दैवीय शक्ति ने, जिसे बाद की पीढ़ियों ने ईश्वर के नाम से जाना, ब्रह्मांड का प्रथम बीज बोया। प्रकाश हो। अंत में ईश्वर ने आदिमानव की रचना की। आदम, ये सारी सृष्टि हमने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें हमने सृष्टि के लिए। तुम हर वृक्ष का फल खा सकते हो, अतिरिक्त इस वृक्ष के। ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य भागेगा बुराई की तरफ। ये मेरा आदेश है, यदि इसका फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और फिर ईश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, सो ईश्वर ने नारी की रचना की।
हव्वा, ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी ना खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। ये ईश्वर का आदेश है।
हव्वा, तुम क्या किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती?
नहीं, इस पेड़ का फल खाना मना है।
ओ, जानती हूँ क्यों? इसलिए कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाएगा और तब तुम खुद ईश्वर के बराबर हो जाओगी।
मैं नहीं मानती।
मत मानो, खाकर देखोगी तब पता चलेगा।
क्यों हो?
मुझे शर्म आती है।
ऐसा कुछ किया जिस पर शर्म आए?
मैं नग्न हूँ।
तुम्हें पता कैसे चला कि तुम नग्न हो? सुनो, तुमने ज्ञान वृक्ष का फल खा लिया क्या?
मुझे इसने दिया जिसे आपने भेजा।
मुझे सांप ने खाने को कहा।
आज से ये भी होगा, तुम्हारे वंशज एक दूसरे पर इल्जाम रखेंगे। शाप है मेरा सांप का कि हमेशा पेट के बल चलेगा और भूल जाएगा। शाप है मेरा औरत पर कि हमेशा प्रसव पीड़ा उठाएगी और आज से सारे फैसले पुरुष करेगा और ये उसका मुंह देखेगी। शाप है मेरा तुम पर कि हमेशा मेहनत करोगे, माथे का पसीना बहाओगे तो पेट की आग बुझाओगे। अच्छा होता यदि तुम इस वृक्ष का फल ना खाते, तब तुम अमर हो जाते। अदन के स्वर से बाहर जाओ और निकलो यहां से, क्योंकि आग की तलवार तुम्हारे और हमारे बीच में गिरने वाली है।
ये थी एडम और ईव की कहानी। आप समझ सकते हैं कि यह अलंकारिक भाषा है और इसमें जो सर्प है इसे लोग क्या मानते हैं? सैटन या शैतान, जिसको हम क्या कहते हैं? माया। तो ये सारी बातें ही जो है अलंकारिक भाषा में, कुरान में भी आती है ये स्टोरी और बाइबल में भी है, एडम और ईव की कहानी। हाँ चार्ज लगाएं। नेक्स्ट, अब ये जो देवी देवताएं थे सत्यु के, इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। निकाला मतलब क्या हुआ, देवताएं जो हैं पहले अपने आप को आत्मा समझते थे, लेकिन कई जन्म लेने के बाद उन्हें भान महसूस हुआ कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं। और इस भान से जो है सबसे पहले सृष्टि में काम विकार की प्रवेशता हुई, देवताएं विकार में जाने लगे। बाबा ने एक साकार मुरली में कहा है कि ऐसे कोई दिन निश्चित नहीं है कि देवताएं कभी जो है वाम मार्ग में गए, लेकिन काफी संख्या में जाने लगे और उन्हें मालूम नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें इसमें आनंद मिला। और बाद में क्या हुआ, प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संतुलन था वह बिगड़ गया और प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो गई। देवताएं नास्तिक थे, जब प्राकृतिक आपदाएं शुरू हुई तब देवताओं को मालूम पड़ा कि हमने कुछ गलत किया है और प्रकृति ने हमें पनिश किया है, और यही गिरे हुए देवता कौन कहलाए, आर्य कहलाए। इसीलिए आप देखेंगे दुनिया की सबसे प्राचीनतम किताब ऋग्वेद, जिसमें प्रकृति के तत्वों को भगवान मानकर पूजा किया गया है, अग्निदेव, जल देवता, वायु देवता। तो पहले प्रकृति के तत्वों को लोगों ने क्या किया, भगवान मानना शुरू किया, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें दुख देना आरंभ किया। और भारतीय संस्कृति जो कि केवल दिल्ली, हस्तिनापुर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कुछ जगह थे वहीं तक सीमित थी, लेकिन वहां से पूरे विश्व में फैल गई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो द्वापर कलयुग की घटनाएं थी, कौन कौन से प्रकृति के तत्व थे और क्या क्या घटनाएं घटी। बाबा के मुरलियों में बार बार जिक्र आता है कि जब देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो क्या होता है, धरती हिलती है, भूकंप आता है, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। उसमें सबसे पहला मैं जिक्र करूंगा एक विश्वव्यापी बाढ़ की। भारत के हर प्राचीन ग्रंथ में, भारत ही नहीं विदेशी ग्रंथों में भी बार बार बाढ़ का उल्लेख आता है। हम यहाँ पे कहते हैं सत्यव्रत या मनु के समय बाढ़ आया था, वे कहते हैं नूह का सैलाब, फ्लड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नूहा। तो पूरे सृष्टि चक्र में दो फ्लड बहुत ही मशहूर है, और दो फ्लड कब कब आते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। एक फ्लड जो है महाविनाश के पश्चात, जब महाविनाश होता है उसके पश्चात ये फ्लड आती है जो यहाँ पे दिखाया गया, और दूसरा द्वापर त्रेता के संगम पर लगभग ईसा मसीह के या आज से 2700 वर्ष पहले, क्राइस्ट के लगभग 700 ईयर्स पहले। ये हमारी भी मान्यता है, कई लोग समझते हैं 2500 वर्ष, लेकिन हमारा पर्सनल ऐसी मान्यता है कि ये लगभग 2700 वर्ष पहले, ईसा मसीह के 700 ईयर्स पहले, आज से 2700 वर्ष पहले। इस फ्लड का जिक्र सब धर्म में है। यहां तक लिखा गया है वायु पुराण में कि कुरुओं ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, वहां से शिफ्ट करके कौशाम्बी में शिफ्ट की, कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद। ऐसा तो ये जिक्र बार बार हर भारतीय ग्रंथ में आता है। बाबा ने 83 की मुरली में भी इस बाढ़ का जिक्र किया है कि महाविनाश के पश्चात भारत का 3/4 हिस्सा पानी में डूब जाएगा और ऊपर से भारत बिल्कुल एक पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देगा, और तब सबसे पहले इस सृष्टि के प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म होगा। अव्यक्त मुरली 1983 में बाबा ने इसको स्पष्ट किया है। तो पहली जो प्राकृतिक घटना थी वह थी बाढ़। दूसरा जो है पृथ्वी जो पहले सीधी थी, देख रहे हैं वे 23.5 डिग्री पे झुक गई, और इसके झुकने से बहुत विश्वव्यापी परिणाम हुए, और अलग अलग सीजन जो बहुत गर्मी सर्दी सीजन इसीलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। इसके बारे में और भी विस्तार बताया जा सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग महाभारत काल का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर, लेकिन जब पृथ्वी अपनी धुरी पे झुक जाएगी तो ग्रह और नक्षत्र क्या हो जाते हैं, उनकी दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। तो कोई भी हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा कि कब ये क्या हुआ था, क्योंकि भारतीय ज्योतिष इस बात को मानता है कि सृष्टि के आदि काल में सतयुग में जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं सब लाइन पे होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, बाद में धीरे धीरे डिसऑर्गेनाइज होते हैं। तो पृथ्वी के इस झुकने के कारण कोई भी काल निर्धारण करने की प्रक्रिया हमें सही रिजल्ट नहीं दे पाएगी 2700 वर्ष पहले की। दूसरी घटना होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, बड़े बड़े महाद्वीप हैं ये ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से बिखरना शुरू होते हैं। बाबा ने मुरलियों में बार बार कहा है कि भारत अविनाशी खंड है, भारत वैसे का वैसे ही रहता है, और बाकी अमेरिका, अगर आप देखेंगे नक्शे में साउथ अमेरिका और अफ्रीका को एक दूसरे में आप फिट कर सकते हैं। सारे महाद्वीप जो है एक दूसरे में फिट होते हैं। तो पहले पूरी दुनिया, सारी की सारी दुनिया एक थी और भारत ही उसमें सबसे महत्वपूर्ण खंड था। उस जमीन को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, जियोलॉजी में इसको मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसको कई लाखों वर्ष दूर ले जाते हैं। दूसरा, अब जब ये बाढ़ और भूकंप शुरू होते हैं तो क्या हुआ, कई लोगों ने जंगलों में जाकर शरण ली, कई लोगों ने औजार बनाए, कई लोगों ने गुफाओं में पेंटिंग्स की। वही पेंटिंग्स आज लोगों को मिलते हैं और वही औजार टूल्स मिलते हैं। तो वैज्ञानिक क्या समझते हैं, समझते हैं कि आदि मानव पहले वानर था, बाद में सभ्य बना, उसने औजार बनाए, उसने पेंटिंग की। लेकिन इस पेंटिंग्स में आप पाएंगे कि सारी ऑलमोस्ट पेंटिंग्स हैं, उसमें मानव को क्लीन शेव दिखाया गया, बिना दाढ़ी मूछ के, दाढ़ी है ही नहीं। तो क्या मानव में इतनी सभ्यता थी कि दाढ़ी कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दाढ़ी बिना उस तरह की बनाई नहीं जाती है। तो असभ्य नहीं थे। ये एक चीज जिक्र जो है वैज्ञानिक यहां पर जो है भूल कर बैठते हैं, जो यहां पर दिखाया गया है। दूसरा, बहुत सारी जातियां जो है जो सतयुग में थी वो चली जाती हैं और बहुत दुख देने वाली जातियों का जन्म होता है। बाबा मुरलियों में बार बार जिक्र करते हैं कि सतयुग में कोई दुख देने वाले जीव नहीं होंगे। तो दुख देने वाले जीवों की शुरुआत कब से हुई, द्वापर युग में। और क्यों हुई, क्योंकि इस महाविस्फोट से बहुत सारा एनवायरमेंट में रेडिएशन फैलता है और सबको मालूम है रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, नए नई जातियों का जन्म भी होता है। भाषा पहले एक थी, बाइबल में भी मेंशन किया गया है कि संसार में पहले भाषा एक थी, बाद में क्या हुआ, लोगों ने जहां जहां रहना शुरू किया, जैसे जैसे वहां की जलवायु थी वैसे उनके रूप रंग सब बदलते गए। लेकिन सभ्यता की शुरुआत भारत से हुई और भारत से जो है पूरी सभ्यता जो है पूरे विश्व में फैल गई। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे रेडिएशन रेट। रेडिएशन या रेडियो एक्टिविटी को समय मापन के लिए बहुत बड़ा साधन माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेडिएशन हमेशा से कांस्टेंट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जगदीश भाई भी इस बात को मानते थे कि इस महाविस्फोट के बाद रेडिएशन के रेट में अंतर आ जाता है। इसलिए जितने भी जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं धरती की काल निर्धारण के लिए, सबके सबके रिजल्ट 2700 साल पहले के एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं दे पाएंगे। वायुमंडल में कुछ किरणें होती हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन की रेट कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है, उसमें भी अंतर आ जाता है। अर्थ का आपको मालूम है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कमजोर होते जा रहा है और उसकी भी आयु 5000 वर्ष के आसपास ही आती है, जो इस बात का भी प्रमाण है कि पृथ्वी 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है। फिर बताया गया है कि ग्रेविटी में भी चेंज आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी चेंज आता है और अर्थ की एक्सिस भी टिल्ट होती है। तो छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाते हैं इन घटनाओं का, और फिर मनुष्य को शिकार भी करना पड़ता है, ये भी दिखाया गया है इस वीडियो में। पृथ्वी अपनी धुरी पे झुक रही है, वो दिखाया गया है। ये देखिए कैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नए नए जमीन और देश उनका उदय। पृथ्वी का कोर चार्ज हो रहा है। का मैग्नेटिक फील्ड। बर्फ में रशिया में ऐसे मेमोथ मिले हुए हैं। अब इस प्राकृतिक आपदा के बाद सभ्यता का विकास पहले कहां हुआ था? भारत देश में। यहां से जो है सभ्यता जो है फैलती है सीधे, हम चाहे तो पाथ भी ट्रैक कर सकते हैं। यहां से सभ्यता का जो फैलाव होता है सीधा मेसोपोटामिया होता है, इराक। कई विदेशी मानते हैं कि प्राचीन सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता नहीं है लेकिन मेसोपोटामिया की है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग भारत से ही गए थे। वहां से सभ्यता मिस्र जाती है, मिस्र मतलब इजिप्ट, और फिर वहां से ग्रीक, ऐसे करके सभ्यता का फैलाव होता है। अब हम बात करेंगे इब्राहिम की। तो इब्राहिम के बारे में भी थोड़ा जानना आवश्यक है जो इसमें दिखाया गया है इतिहास के चित्र में। यहां पे बताया गया है जर्नी ऑफ इब्राहिम। इब्राहिम के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बताएंगे आपको। इब्राहिम को मुस्लिम भी मानते हैं और क्रिश्चियंस भी मानते हैं, उसे अपना कॉमन एंसेस्टर समझते हैं। इब्राहिम की कहानी में पूरा विस्तार में नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग से ही हम कभी सत्र रख सकते हैं। इब्राहिम के बारे में बताया जाता है कि इब्राहिम के पिता तेरा थे जो मूर्ति पूजक थे। हरबियों में इब्राहिम का मतलब होता है लाइक ब्रह्मा, उसके पिता ब्रह्मा के उपासक थे, मूर्ति पूजक थे। और बताते हैं कि इब्राहिम ने जब सब लोग गए थे तो इब्राहिम ने सब लोग मेले पे गए थे, इब्राहिम ने सारी मूर्तियां तोड़ दी और केवल एक प्रतिमा जिसे हम काबा का पत्थर या संगे अश्वत कहते हैं उसको उसने नहीं तोड़ा। बताते हैं कि काबा में सबसे पहली स्थापना संगे अश्वत की किसने की थी? इब्राहिम ने की थी। इब्राहिम को बताते हैं कि कई वर्ष हो जाने के बाद भी उसे बचाने संतान उत्पत्ति नहीं हुई। उसकी वाइफ का नाम सराह था और संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो इब्राहिम क्या करता है कि अपनी वाइफ की राय से, मिश्र की एक दासी रहती है उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनसे उनको एक बच्चा होता है। अब बताते हैं कुछ समय के उपरांत इब्राहिम को एक और संतान होती है जिसको कहा गया है कोवेनेंट ऑफ गॉड, ईश्वर के आदेश अनुसार। जगदीश भाई ने इस बात को स्वीकार की है कि इब्राहिम द्वापर और त्रेता के संगम पे हुए, तो तभी भी पवित्रता के बल पर कुछ हद तक संतान उत्पत्ति की क्षमता थी, इसलिए इब्राहिम का एक पुत्र जो है वो उस बल से हुआ, शारीरिक संबंध से नहीं हुआ। तो एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं इब्राहिम के बारे में। याद रहे, एक और उसके पहले एक और चीज कहना चाहेंगे, इब्राहिम के दो बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चा जो है वह मुस्लिम धर्म की हायरार्की को फॉलो करता है, दूसरी जो संतान होती है वह आगे चलकर मोसेस यहूदियों की रचना होती है और यहूदी से क्या बने, क्रिश्चियंस। फिर से आपको बताएंगे, इब्राहिम के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा जिसे आगे चलकर मुसलमानों के वंश का स्थापक बनता है, दूसरा जो बच्चा होता है वह यहूदियों में कन्वर्ट, यहूदियों के धर्म स्थापक का आधार बनता है और यहूदी से क्या निकलते हैं, क्रिश्चियन, क्योंकि क्राइस्ट ने किसको कन्वर्ट किया क्रिश्चियन में, यहूदियों को। इसलिए यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम तीनों इब्राहिम को अपना कॉमन एंसेस्टर बताते हैं। और इब्राहिम के पिता कौन थे, मूर्ति पूजक जो भारत से गई थी और वो खालदिया के निवासी थे, नगर का नाम उर था। यहां पे भी आजकल नगरों के नाम उर, निपुर, कानपुर, नागपुर, आज भी लोग ये परंपरा फॉलो कर रहे हैं। तो भारत से ही मिसोपोटामिया में सभ्यता गई थी। इब्राहिम जो है इराक के थे जिसे मिसोपोटामिया कहा जाता था। तो इब्राहिम के वंशावली की शुरुआत कहां से हुई, भारतीय संस्कृति से ही, आर्य सभ्यता से हुई। और आर्य सभ्यता की शुरुआत के आधार कौन थे, देवी देवता धर्म के लोग। महात्मा बुद्ध के पेरेंट्स क्या थे, हिंदू थे। महावीर स्वामी के पेरेंट्स भी हिंदू थे। इसलिए भारतीय संस्कृति दुनिया के जितने भी जो धर्म है उसकी जननी है और उसकी उसका फाउंडेशन है आर्य सभ्यता और उसका फाउंडेशन है देवी देवता धर्म, जिसकी सैपलिंग स्वयं परमात्मा शिव लगा रहे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति सभी संस्कृति की जननी है। आइए देखते हैं वीडियो इब्राहिम।
हर खानदान की आने वाली नस्लें होंगी, हमारा क्या होगा। काश मैं तुम्हारी गोद में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा डाल सकती।
रोने से क्या होगा,
जानती हूँ दिल का बोझ तो कम होगा।
बड़ी आपा, दिल का बोझ हल्का करने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ।
ये ठीक कह गई है, मालकिन से औलाद न हो तो मालिक खादिमा से औलाद हासिल कर सकता है। मुझे हेगार से तुम्हारा बच्चा चाहिए, इस तरह मैं मां बन सकती हूँ।
मैं सिर्फ तेरे हुक्म पर चला, अकेला चला, यह तो मुझे बताएगा नहीं कि मैं ठीक चला या नहीं।
तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया, और आज से तुम अब्राहम यानी ऊंचा नाम के नाम से नहीं बल्कि अब्राहम यानी बहुतों का बाप के नाम से जानी जाओगे। और सारी जिसका मतलब शहजादी होता है, आज से सारा के नाम से जानी जाएगी यानी बहुत सी कौमों की आलिमा। मुल्क का नाम जिसमें तुम परदेसी बनकर आए हो यह तुम्हारा होगा, तुम्हारे साथ और तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ यह मेरा अहद है। अहद की निशानी के तौर पर मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूं।
अब्राहम,
ये थी शॉर्ट में इब्राहिम की थोड़ा सा परिचय, क्योंकि कई बार हम चित्रों में देखते हैं लेकिन विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने सोचा एक छोटी सी वीडियो जो है दिखाई जाए। इसके बाद भारतीय संस्कृति का काफी विकास होता है और यही गिरे हुए देव आर्य कहलाए। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि दुनिया की सबसे प्राचीन किताब, सबसे पहले वेद लिखे गए। सब जानते हैं कि वेद काफी प्राचीन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय की मानसिकता और बाबा जो मुरलियों में जो देव सभ्यता के बारे में बताते हैं उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, यहां पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया है। पहले तो एक बात स्पष्ट कर दें कि आर्यकाल तक पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश दो भाग में बट जाता है। यहां पे विंध्या पर्वत है, विंध्या पर्वत के नीचे कोई भी सभ्यता का विकास नहीं होता है। तो पहले यही पूरा भारत देश, मतलब पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी भारत देश की सीमाओं में आता था। और सतयुग तक लोग, जहां तक मेरा पर्सनल अनुमान है, सतयुग और त्रेता युग तक लोग विंध्या पर्वत के नीचे तक नहीं गए होंगे, क्योंकि वहां से समुद्र शुरू होता है। बाबा मुरलियों में बार बार बताते हैं कि देवताएं समुद्र के किनारे नहीं रहते। तो ऋग्वेदिक काल अक्सर करके लोग 1500 वर्ष पहले खींचते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। अगर आप विद्वानों की बात करें तो विद्वान इस बात पे एकमत जरा भी नहीं है। कोई कहता है ऋग्वेदिक काल 2000 वर्ष, कोई कहेगा 5000 वर्ष, कोई कहेगा 3000 वर्ष। जगदीश भाई ने सबकी पूरी एक लिस्ट निकाली थी, तो इतनी लंबी लिस्ट हो नहीं सकती है। वैदिक काल अधिक से अधिक तो 700 वर्ष, ईसा के 700 वर्ष पूर्व तक जाना चाहिए, ये दिखाया गया है। आर्य का मतलब होता है, बाबा मुरली में बताते हैं, आर्य का मतलब होता है पवित्र, खैर या श्रेष्ठ। अब सतयुग और त्रेता युग में यहां शुरू करते हैं। बाबा ने मुरलियों में बताया है कि देवताएं सोमरस पीते थे, और आश्चर्य की बात है वेदों में भी लिखा गया है कि आर्य क्या पीते थे, सोमरस। सोमरस के ऊपर बहुत सारी ऋचाएं लिखी गई है, मंत्र लिखे गए हैं, इसकी बनाने की प्रोसेस, विधि, सब कुछ इसमें लिखी गई है। वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे। बाबा ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि देव सभ्यता के लोग भी समुद्र के किनारे नहीं रहते थे, मीठी नदियों के किनारे रहते थे। इसलिए हम देखेंगे जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं मिलेंगी आपको मीठी नदियों के किनारे मिलेगी, चाहे मिश्र की नील नदी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की दजला फरात नदियों की सभ्यता हो, ये दिखाया गया है। आर्य लोग लंबे चौड़े हुष्ट पुष्ट हुआ करते थे, देवताओं का भी लगभग हम यही विवरण पाते हैं। ऋग्वेदिक आर्य प्राकृतिक आपदाओं से परिचित नहीं थे, उनके लिए प्रकृति की आपदाएं बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ करती थी। इसलिए ऋग्वेद में बार बार प्रकृति की हर घटना को बड़ा आश्चर्य से व्यक्त किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि आर्य सभ्यता के पहले लोगों ने ये सब घटनाएं देखी नहीं थी, उनके लिए एक आश्चर्य का विषय थी। ऋग्वेदिक आर्य पाप पुण्य पुनर्जन्म किसी प्रकार की कामना, मुक्ति की कामना नहीं रखते थे। विजीवेम शरदम शतम, वो 100 वर्ष तक जीने की कामना रखते थे, जो इस बात का प्रतीक है कि संसार में तभी दुख नहीं था, लोग सुखी थे, देवयुग था। ऐसे बहुत सारे प्रमाण जो है दिए जा सकते हैं, लेकिन सेशन काफी लंबा हो जाएगा। पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी इतनी स्वतंत्र थी। बाबा ने भी हमें बताया है कि सतयुग और त्रेता युग में देवताओं में जो है, देवी देवताओं में पर्दा प्रथा नहीं होती है। तीसरी, वैदिक काल के पहले लोग क्या करते थे, लिखने की परंपरा नहीं थी, लोग श्रुति परंपरा थी। श्रुति मतलब होता है लोग मेमोराइज कर लेते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो इन्फॉर्मेशन पास होती थी। कब तक पास होती गई, सतयुग में भी पास होती गई, त्रेता में भी पास होती गई, और त्रेता के अंत में ऋषि मुनियों ने इसको कंपाइल करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उसके पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, इसलिए हमारे भारतीय ग्रंथों में श्रुति या स्मृति कहा जाता है भारतीय ग्रंथों को। एक विशिष्ट बात बताना चाहेंगे जो बिल्कुल ही नहीं है, वो यह है सरस्वती नदी के बारे में। बीच में नासा के सैटेलाइट ने स्कैन किया था कि राजस्थान से एक नदी बहा करती थी, और इस नदी का उल्लेख वेदों में भी आता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कुछ महत्व नहीं था, न पाप धोने की प्रथा की बात थी। पूरे ऋग्वेद में गंगा नदी का विवरण एक बार आया है, यमुना नदी का विवरण 2 बार आया है, और सरस्वती नदी का विवरण बार बार आया है। और आगे वेदों के बाद महाभारत लिखा गया, उसमें भी बलराम की यात्रा की बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि सरस्वती नदी का क्या हो रहा है, स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि त्रेता के अंत तक सरस्वती नदी थी। इसका मतलब यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरस्वती नदी सतयुग और त्रेता में भी होगी, क्योंकि महाविनाश के पश्चात ऐसे लोग कहते हैं, बताते हैं कि नदियां वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ उनकी दिशाओं में परिवर्तन आता है, बहुत बड़ी मान्यता है। तो हमारा पर्सनल भी मानना है कि सतयुग और त्रेता युग में सरस्वती नदी थी, लेकिन द्वापर के बाद ये नदी गुप्त हो जाती है, और शायद यही कारण रहा हो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाप्ति का ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरी बात हम चर्चा कर रहे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या द्वापर और त्रेता के संगम पर इस सृष्टि के महाविनाश का जो है प्रूफ या प्रमाण मिले थे कि नहीं मिले थे, क्योंकि महाविनाश यहां पर होता है और सारे शास्त्र कब लिखे गए? द्वापर और त्रेता के संगम पर, त्रेता के अंत में। मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता था, एक बात बताना चाहूंगा कि बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि त्रेता को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि कुछ हिंसक घटनाएं द्वापर के थोड़े पहले ही शुरू हो गई थी। कुछ हिंसक घटनाएं द्वापर के पहले शुरू हो गई थी, ये 100% प्रूफ से बताया जा सकता है। शायद यही रीजन रहा हो बाबा बार बार कहते हैं कि त्रेता को हम सही मायने में स्वर्ग नहीं कह सकते। मैं नहीं कह रहा हूं कि त्रेता में हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन अंत आते आते कुछ घटनाएं शुरू हो गई थी। इसलिए वेदों में किसी भी युद्ध के बारे में नहीं कहा गया है, केवल एक 10 राजाओं का युद्ध का छोटा सा एक युद्ध का विवरण आता है, वरना उसके पहले किसी युद्ध का जिक्र नहीं है। और यही कारण था कि लोगों ने इतिहास की कोई घटना का वर्णन नहीं किया, क्योंकि लोग सुखी थे, कोई घटना घटती नहीं थी। जब कोई घटना घटेगी नहीं तो लोग इसका वर्णन करेंगे ही नहीं। तो बाबा मुरली में बार बार बताते हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान सतयुग और त्रेता युग में क्या हो जाएगा? प्रायलोप हो जाएगा, समाप्त नहीं। प्रायलोप का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में यह ज्ञान अवश्य होगा। जगदीश भाई ने इस बात को स्वीकार किया है, गीता और महाभारत का सच्चा सार और स्वरूप में कई जगहों पर उन्होंने उल्लेख किया है कि सतयुग और त्रेता युग के लोगों को मालूम था कि बहुत पहले एक महाभारी महाभारत लड़ाई लगी है यहां पर, और कोई सभ्य पुरुष थे, कोई ज्योति प्रकट हुई, जो अच्छे थे, अच्छे लोग थे, उनकी विजय हुई, बुराई की हार हुई। इस महाविनाश के पश्चात लोग एक बहुत बड़ा पाठ सीख लेते हैं, और इसके बाद 2500 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं होता है। तो सतयुग और त्रेता युग के लोगों को ये बातें इन्फॉर्मेशन थी, पूरा ज्ञान नहीं था, ईश्वरीय ज्ञान नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑलरेडी जगदीश भाई ने बुक में मेंशन किया हुआ है, और ये बातें श्रुति के रूप में परंपरा से चलती आई, और 2500 वर्ष के बाद लोगों ने क्या किया, इस बातों को शास्त्रों में लिखना शुरू किया। केवल महर्षि व्यास नहीं, वहां द्वापर और त्रेता के संगम पर बहुत सारे गुरुकुल हो गए थे, और हर गुरुकुल ने क्या किया था, कुछ ना कुछ इसका रिकॉर्ड मेंशन किया हुआ था। महर्षि व्यास ने क्या किया, बहुत परिश्रम किया, गुरुकुल में जा जाकर सारी कथाएं, आख्यान, इस महाभारी महाभारत लड़ाई का कथाएं और कहानियां भी कहीं न कहीं चलती है, उन आख्यानों का, उन कहानियों का कलेक्शन किया, और तब जाके महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत में स्वयं लिखा गया है कि एक बार महर्षि व्यास को हिमालय की गुफा में साक्षात्कार हुआ, जैसे कि उनको अंतर चक्षु मिल गए हो और सृष्टि से आदिकाल का इतिहास उन्हें ज्ञात हो गया हो। अब महर्षि व्यास के पास समस्या ये थी कि उन्होंने साक्षात्कार किया, अगर मान लीजिए तीसरे विश्व युद्ध का, जिसमें लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर रहे हैं, तो उनके जमाने में क्या था, तीर, धनुष और गदा। इसलिए उन्होंने क्या किया, तीर, धनुष और गदा को भयानक से भयानक रूप में वर्णन करने का प्रयास किया। इसलिए महाभारत में हम देखते हैं 18 अक्षिणी सेना का विनाश तीर धनुष के द्वारा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो व्यास की मजबूरी ये थी, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से उस बातों को लिखा। बाबा के भी हमने कल रेफरेंसेस बताए थे मुरलियों के, कई मुरलियों में भी इसका जिक्र आता है, जैसे कल की हमने एक मुरली, ये मुरली जो है 7/5/2012 की है, पढ़ के सुनाते हैं। यह ज्ञान बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है, फिर जब द्वापर युग में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो, औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहां ही खत्म हो जाता है, बाद में खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए उनको अनादि कह देते हैं, द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। इसीलिए कई लोग क्या मानते हैं, वेद अविनाशी है, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। गुलजार दादी ने भी अपना अनुभव सुनाया था, यह अनुभव रिकॉर्डेड है, जिसमें बताते हैं कि जब बाबा कराची से आ रहे थे, सिंध से यहां पर आ रहे थे अबू में, तब वो वहां पे धोबी घाट हुआ करता था, पुरानी सारी मुरलियां दफना रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि बाबा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बाबा का उत्तर था कि बच्चे जब द्वापर में बच्चे शास्त्र बनाएंगे तो ये मुरलियां उनके काम में आएंगी। तो हो सकता है सारी मुरलियां जो है द्वापर और त्रेता के संगम पर मिली हो, लेकिन अगर कोई भी आदमी मुरलियों को डायरेक्टली पढ़ता है जिसने 7 डेज कोर्स ना किया हो, तो उसका अर्थ क्या निकलता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। रावण को जीतो, रावण को मारो, तो लोग क्या समझेंगे, जरूर कोई ऐसे व्यक्ति होकर गया होगा। तो ऐसे और भी रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। तीसरी एक बात बताएंगे वो ये है, इस प्रमाण की बात चल रही थी, आप इस आकृति को देख सकते हैं, यह आकृति, ये टेबलेट जो है मिश्र के पिरामिड में मिला है। इसको बड़े गौर से देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, फाइटर प्लेन्स, ये सारी आकृतियां मिश्र के पिरामिड में मिली हैं। इतिहासकार इस बात पर सहमत कम से कम तो होंगे कि मिश्र के पिरामिड अभी नहीं बने हैं, कम से कम 2500 वर्ष पुराने हैं। तो आखिर इसके बारे में हम क्या कहेंगे, क्या इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? जरूर महाविनाश की कुछ चीजें द्वापर त्रेता के संगम पर जब उथल पाथल हुई थी तो उनके हाथ में लगी होगी। कोई कह सकता है चलो उन्होंने साक्षात्कार किया होगा, चलो साक्षात्कार किया होगा इसका मतलब आप मान लेते हैं कि सच में दुनिया का महाविनाश होने वाला है और दुनिया की सारी घटना पहले से पूर्व निश्चित है, तो इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? तो इस बात का प्रमाण है कि द्वापर त्रेता के संगम पर जब उथल पाथल होती है तो इस जमाने की भी कुछ चीजें उनके हाथ में लगेगी। इसीलिए क्या होता है, जब महर्षि व्यास जब महाभारत की रचना करते हैं तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके कहता हूं लेकिन कोई मेरी बात सुने तो। उसमें स्पष्ट कहते हैं उनको, उनका मानना था कि सच में महाभारत लड़ाई हुई है, महाभारत लड़ाई मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर। खैर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले चार वेदों की रचना हुई, वेदों के बाद किसकी रचना हुई, फिर उपनिषद काल आया। उपनिषद काल हुआ था जिस समय बुद्धिज्म का बहुत प्रचार हो रहा था। उसके पहले आपको छोटा सा वीडियो दिखाते हैं महर्षि व्यास का, कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें अपनी युगल से चर्चा कर रहे हैं और उनकी युगल बताती है कि आप आख्यान और सारी कथाओं का जो है संकलन करेंगे। तो देखते हैं छोटा सा वीडियो, ये तो ये क्लिप तो ऑलरेडी आपने देखी हुई है, इसलिए मैं पीपीटी के फॉर्म में था, इसे वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया। पहले एक छोटी सी दिखा देते हैं। देखिए जहां पे वो मिला है टैबलेट उस दीवार पर, अब हम देखते हैं वीडियो दूसरा वाला। इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस फिल्टर किए हुए हैं क्योंकि क्या है कि काफी विस्तार हो रहा था, इसके लिए हमने सारे के सारे वीडियोस नहीं रखे हैं, कुछ कुछ ही एक दो वीडियो जो है जो महत्वपूर्ण है वो रखा गया है। ये एक उपनिषद काल का जो दिखाया गया है, वैदिक समय में कैसे हुआ करता था, लोग काफी यज्ञ रचा करते थे। वीएलसी में ओपन करते हैं। आपको वैदिक काल में ले जा रहे हैं।
अम्ब कात्यायने, अम्ब मैत्री, अम्ब मैत्री, प्रणाम अम्ब।
मैत्री समय के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे।
जनक सभा में सभी को पराजित कर दिया है और इस बार 1000 गायें जीती हैं।
1000 गायें?
हाँ, और इतना ही नहीं, हर गाय के सिंह पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी बंधी हैं।
हर गाय के सिंह पर 10-10 स्वर्ण मुद्राएं?
हाँ।
तामसरा, पहले सांस तो ले लो, फिर विस्तार से बताना कि तुम्हारे आचार्य ने किस पर विजय पाई।
सांग, ये गाय गुरुकुल कब तक पहुंच जाएंगी? और सिंगों पर से स्वर्ण मुद्राएं तो उतार ली है ना?
कात्यायनी, पहले उसे पानी तो पी लेने दो। क्या इस बार जनक सभा में जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा हुई या काव्य रस ही बहा?
हाँ, हर बार की तरह इस बार भी जनक सभा में जीवन के मौलिक प्रश्नों पर चर्चा हुई। जनक सभा, मिथिला के राजा जनक की सभा अपने काल में सवालों के पड़ताल के लिए प्रसिद्ध थी। दूर दूर से सोचने वाले जनक की सभा में आते, कई दिनों तक यह क्रम चलता। पूछताछ करो, प्रश्न करो, उत्तर दो, उत्तर ढूंढो, यही उद्देश्य।
शांति शांति शांति।
ये उपनिषद काल था, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। महर्षि व्यास का भी आपको दिखाएंगे, ढूंढने में हम समय हाँ ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा ही थोड़ा सा क्लिप है, इसको वीएलसी में ओपन करते हैं, बेटर रहेगा।
मैंने
इसमें आप गौर करेंगे डायलॉग पे, जिसपे बताया जा रहा है कि कैसे वो गुरुकुल से सारी चीजें, सारे आख्यानों का कलेक्शन कर रहे हैं।
मैंने शनकादिक ऋषियों से बात कर ली है, सबका मानना है कि यदि वर्तमान वेद को कई हिस्सों में बांट दिया जाए तो उससे ज्ञान का प्रसार भी अधिक होगा। छोटे छोटे हिस्से एक आचार्य द्वारा कई छात्रों को पढ़ाना भी आसान होगा, इससे वेद की मनीषा का विस्तार भी होगा।
आचार्य, यह शिव धनुष मैं कैसे उठा पाऊंगा?
हीरा अपना मोल कहां जानता है। तुम वेद का विभाजन करो, ये मेरी अभिलाषा है।
वेद व्यास यानी वेदों का विभाजन करने वाले, वेदों का विस्तार करने वाले कहलाए। जरा सोच कर देखो नटी, जब लिखने की परंपरा नहीं थी तब अपनी स्मृति से श्रुति यानी सुने हुए वेद ज्ञान को चार भागों में बांटना और प्रत्येक वेद को अपने शिष्यों को याद कराना और उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, कितना मुश्किल काम रहा होगा।
अरुणी, मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, लौटने में कई महीने लग जाएंगे।
अभी तो आप नैमिषारण्य से लौट कर आए हैं।
वही सत्र में मैंने पुराणों को संकलित करने का संकल्प लिया था।
यानी आप पंचनद प्रदेश के एक एक गुरुकुल में जाएंगे, ऋषियों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से प्राचीन कथाएं, आख्यान, वंशावली, इतिहास, जीवन चरित्र, विज्ञान आदि ढूंढेंगे, उन सब को इकट्ठा करेंगे और फिर लिखेंगे। क्या ये जिम्मेदारी कोई और ऋषि नहीं ले सकता?
अरुणी, ऋषि लाख प्रयत्न कर रहे हैं पर वेदों का चिंतन समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो बुद्धिजीवियों तक सिमट कर रह गया है।
अरुणी, मुझे लगता है जब तक मैं अपने काल की इस दारुण इतिहास को लिख नहीं लेता मैं शांत नहीं होगा। मैं लिखूंगा, मैं भारत वंश की महागाथा लिखूंगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। अब आपको हम ले चलते हैं, तो सबसे पहले वेदों की रचना हुई, इसके बाद उपनिषदों की रचना हुई, और जो मैंने वीडियो दिखाया इसके पहले वो उपनिषद काल का वीडियो था, जो पूरे भारत देश में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसकी चर्चा हुआ करती थी। और उस समय भारत में बुद्धिज्म बहुत फैल रहा था, बहुत सारे लोगों को वेदों की कठिन भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अभी आपने डायलॉग में देखा कि कैसे वेद सामान्य लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था। उस समय तब क्या होता है कि महर्षि व्यास महाभारत ग्रंथ की रचना करते हैं, सब आख्यानों को कंपाइल करते हैं। और गीता के बारे में आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही बड़ा सत्य गीता के बारे में। गीता के बहुत सारे श्लोक हूबहू उपनिषद के श्लोक से मिलते जुलते हैं, इसलिए कई विद्वानों का सब विद्वान मानते हैं कि पहले उपनिषद लिखे गए और बाद में गीता। तो गीता लिखे जाने के पहले ही गीता के बहुत सारे श्लोक उपनिषद में थे, इसलिए कई लोग गीता को उपनिषदों का सार मानते हैं। अब क्या हुआ यहां पर, तो गीता अलग किताब थी, महाभारत अलग बुक था। महर्षि व्यास ने क्या किया, महाभारत की रचना की, और महाभारत के साथ क्या किया, उन्होंने गीता को ऐड कर दिया। इसलिए बाबा की मुरलियों में बार बार जिक्र आता है कि गीता अलग थी, बाद में लोगों ने क्या किया, इसको महाभारत के साथ ऐड किया। इसके बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक सेशन रख सकते हैं, कि कैसे सारी घटनाएं हुई, कैसे कृष्ण की पहले पूजा नहीं होती थी। वेदों में विष्णु का कोई बहुत मामूली सा जिक्र है, कोई बहुत महत्वपूर्ण देवता नहीं थे, लेकिन जब बुद्धिज्म का प्रचार चल रहा था तब विष्णु एक बहुत बड़े देवता के रूप में उभरे। लोगों ने इनका बहुत प्रचार किया और दो जातियां थी तो आपस में थी, एक थे वैष्णव विष्णु को मानने वाले और दूसरे थे शैव शिव को मानने वाले। दोनों की आपस में फाइटिंग हुआ करती थी, कोई शिव को श्रेष्ठ मानता था कोई विष्णु को। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हिंदुइज्म का बहुत ही ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेस था, बुद्धिज्म का सब जगह प्रचार, अलग अलग धर्म पंथ, ये बहुत ही हलचल का समय था संसार में। तो आइए हम दिखाते हैं छोटी सी एक झलकियां बुद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह का। और बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं, और भी बहुत सारे वर्ग जो थे, नए नए जो शाखाएं जो है उनका उदय हुआ था। तो हम ले चलते हैं आपको आज से 2500 वर्ष पहले।
कौन संप्रदाय था आजीविका जिसका बौद्धों और जैनियों से अक्सर मतभेद रहता था? ये लोग नियतिवादी थे। इनके गुरु मक्काली गौशाला के अनुसार सारा जीवन नियति के आधार पर ही चलता है। आदमी की अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, भाग्य का दर्जा सबसे ऊंचा है।
किसी स्वामी जी, आपका हमारे लिए अंतिम उपदेश क्या है?
नहीं कुछ है होता,
समाज की परंपराओं से जुड़े हुए गौशाला पर उस समय के अंतिम महान कबायली गणराज्य व्रजी संघ के पतन का बहुत गहरा असर हुआ। एक हद तक भारतीय संस्कृति पर जैन धर्म ने भी उतना ही गहरा असर छोड़ा जितना कि बौद्ध धर्म ने। भारत के तमाम धर्मों की तुलना में जैन धर्म ने हमेशा से अहिंसा और सादगी पर अधिक जोर दिया। वेद पाठ करना, दान दक्षिणा देना, देवता के नाम पशु की बलि देना, अमरता पाने को बर्फ या आग से देह को दंड देना, ये सब करके भी शुद्ध नहीं होगे, माया से मुक्त नहीं होगे, नहीं होगे।
आज से 2500 वर्ष का फेज था जब भारत में बहुत हलचल थी। और उस समय बताते हैं कि प्रश्न उठा, वैष्णव और शिव आपस में फाइट किया करते थे, और पहले महाभारत में भी शिव का ही नाम था। बाद में वैष्णव ने क्या किया, उसको अपने प्रचार का एक साधन बनाया और उसपे शिव का नाम कट करके कृष्ण का नाम जोड़ा गया। और महाभारत पहले से फेमस हो चुका था तो उन्होंने गीता को भी महाभारत के साथ एड कर दिया। लेकिन प्रश्न ये उठा कि किसको ईश्वर के रूप में चुना जाए, क्योंकि बुद्धिज्म के मुख्य कौन थे, गौतम बुद्ध, जैनिज्म के मुखिया कौन थे, महावीर, लेकिन हिंदुइज्म में कौन रहेगा, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, ब्रह्म देवता, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। और द्वापर के लोगों ने सुना था कि बहुत पहले विष्णु का राज्य था, बहुत महान थे, बहुत श्रेष्ठ थे, और लोगों ने क्या किया, कृष्ण विष्णु सबको मिलाकर अंत में गीता का भगवान के रूप में किसको सिलेक्ट कर लिया, कृष्ण को। अब बहुत से लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, बहुत बड़ा चिंता का विषय था उस समय भारतीय संस्कृति में। तो जैसे बता रहे थे कि पहले वेदों की रचना हुई, इसके बाद उपनिषद, महाभारत, गीता। अब क्या हुआ था कि लोगों को वेदों की बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों ने रामायण और महाभारत की रचना की। रामायण और महाभारत की रचना ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई है, ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। अब आगे चलकर क्या हुआ कि हमारे ऋषि मुनि थे, जब देख रहे थे कि बहुत से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों में भगवान को चमत्कारिक रूप में दर्शाया गया। दशावतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, अवतारवाद की बातें वेदों में है ही नहीं। ये बहुत बाद में लिखी गई। पहले कोई नहीं जानता था कि विष्णु कौन है और विष्णु किसके अवतार हैं। यह राम भी अवतार ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा, महाभारत रामायण पे भी रिसर्च किया गया है जिसमें बताया गया है कि उसमें फर्स्ट और लास्ट कांड जो है ऐड किया गया है। अदरवाइज जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसमें उन्होंने राम को बहुत एक सिंपल राजा के रूप में रिप्रेजेंट किया है, कहीं उन्होंने राम को अवतारवाद के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया है, रिसर्चर्स का कहना है। तो पुराणों में क्या हुआ, भगवान को चमत्कारिक रूप में रखा गया ताकि लोगों की भगवान के प्रति भावना बैठे। लेकिन तभी ऋषियों को मालूम ये नहीं था कि ऐसा करने से क्या होगा, भारत का बहुत ही भारी नुकसान होगा और लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे। इसका क्या नुकसान हुआ आगे हम चलकर आपको बताएंगे। तो पुराणों की रचना हुई, वायु पुराण, विष्णु पुराण, हर एक शिव पुराण, हर एक की रचना हुई जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बहुत लंबी लंबी गाथाएं कहानियां लिखी गई। अब हम आते हैं, ऐसे समय चल रहा था और तब ईसा के करीबन 326 वर्ष पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आपको आश्चर्य होगा महाभारत में भी ग्रीक के बारे में ग्रीक वर्ड आता है, यवन शब्द आता है। इसे मालूम पड़ता है कि महाभारत की रचना बहुत प्राचीन काल में नहीं हुई थी, लेकिन तभी हुई थी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए हमारे लिए डेट 326 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे टाइमलाइन का काम करता है जिससे कोई भी काउंटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम सिकंदर की जीवनी उसके बारे में डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, केवल मुख्य घटनाओं को ही हम कवर करेंगे। सिकंदर के समय आपको मालूम, सिर्फ ब्रीफ में बताना चाहेंगे, तभी नंद वंश का राज्य था, भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। चाणक्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वर्तमान समय पाकिस्तान पेशावर में है, भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, सबसे पुरानी, और वहां के स्टूडेंट का रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी बाद में आई, पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और जो स्टूडेंट वहां से ग्रेजुएशन कर लेता था उसकी पूरी दुनिया में मान्यता होती थी। उसका लेवल IIT और वर्तमान MIT से भी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही कड़ा था। तो चाणक्य वहीं के प्रोफेसर थे। तो उनकी डिटेल्स हम नहीं देखेंगे, सिर्फ छोटा सा एक वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही उसके संबंधित था। चाणक्य का शिष्य हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और देशभक्ति और अच्छाई नैतिकता के बल पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे, और बहुत अच्छे से चाणक्य ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट का तकनीक यूज किया, क्योंकि तक्षशिला में उसके स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे और वही स्टूडेंट जाके राजकुमार बनते थे। तो चाणक्य ने इस नीति के बल पर बहुत अच्छे से भारत को यूनाइट किया और चंद्रगुप्त को द्वापर का सबसे पहला बताते हैं एम्परर के रूप में घोषित किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जाकर, चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार और उसका पुत्र हुआ सम्राट अशोक। तो अशोक वगैरह की भी वीडियोज हैं, वो हम देखेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत चला जाएगा, कि अशोक को भी वैराग्य आता है। चंद्रगुप्त ने अंत में क्या किया, साउथ में श्रवण बेलगोला है वहां पे उसने दीक्षा ले ली जैन धर्म की, और उसने उपवास करके अपना शरीर का त्याग किया। बिंदुसार जो उसका जो पुत्र था उसने भी क्या किया, उसने भी बताते हैं आजीवक संप्रदाय को अपनाया, और अशोक ने किसको अपनाया, बौद्ध को। तो बड़े बड़े राजाएं जो हुआ करते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय जो थे, उन सब के सब लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे थे। महावीर ने भी वही किया, गौतम बुद्ध ने भी वही किया। तो बहुत ही ये हलचल का समय था। अब हम चर्चा करेंगे सृष्टि चक्र के आगे की घटनाओं का। अब हम जिक्र कर रहे हैं आगे की घटनाओं का। तो यहां तक की सारी घटनाओं का हमने जो है जिक्र जो है किया। अब हम यहां की चर्चा करेंगे गुप्त काल की। बाबा मुरली में बताते हैं, कई बार बाबा उल्लेख करते हैं गुप्त काल का। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा ही द्वापर में क्या बनती है, विक्रमादित्य। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता था कि बाबा अशोक महान को, चंद्रगुप्त को क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं। रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि उनका वास्ता हिंदू धर्म से नहीं था, इसलिए बाबा उनका जिक्र नहीं करते हैं। पूरे अगर द्वापर युग के इतिहास में देखेंगे, सबसे हिंदुओं का सम्राट, सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ है जिसने हिंदुइज्म का उत्थान किया, वो थे विक्रमादित्य। वही विक्रमादित्य जिसकी हम विक्रम बेताल की बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं। तो विक्रमादित्य की हायरार्की चली, और विक्रमादित्य का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, एक चंद्रगुप्त कौन था, चाणक्य का शिष्य, और दूसरा चंद्रगुप्त कौन थे, विक्रमादित्य। अब इसका कंफ्यूजन ये हो गया कि दोनों के बीच में 1200 का डिफरेंस, इसलिए भारत के इतिहासकार जितने भी जो डेट काउंट करते हैं उसमें 1200 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता है कि चंद्रगुप्त कौन, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इससे इंडियन हिस्ट्री में भी काफी चेंजेस आ गए और बहुत सारे डेट आगे पीछे हो गए, ये बताया गया। तो हम चर्चा करेंगे ब्रीफ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपको याद रहा है कि चंद्रगुप्त का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उस समय भारत बहुत ही समृद्ध था, भारत विज्ञान में आगे था। चंद्रगुप्त के समय, वो एक अलग पीपीटी है, पीपीटी में अलग से आपको दिखाएंगे, भारत को, पूरे दुनिया को शून्य किसने दिया? भारत ने, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कालिदास, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, मैं उसका नाम जिक्र करना नहीं चाहूंगा। विदाउट यूजिंग रॉकेट साइंस, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, आर्यभट्ट और बहुत सारे ज्योतिषियों ने उसकी दूरी तक ज्ञात कर ली है, जो वर्तमान समय से बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच करती है। भारत का विज्ञान इतना आगे था। धन्वंतरी और सुश्रुत उस समय के बहुत बड़े वैद्य गिने जाते थे। कहते हैं कि धन्वंतरी के पास एक ऐसी लैब थी जिसमें बाल तक के भार को वजन किया जा सकता था। सुश्रुत जो थे, सुश्रुत, उनको प्लास्टिक सर्जरी करने की भी क्रिया उनको मालूम थी। भारत का साइंस इतना आगे था, भारत का केमिस्ट्री इतना आगे था कि मेहरौली का लोह स्तंभ जो है आज तक उसमें जंग नहीं लगा है और आज के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। तो साइंस जो है, इंडिया साइंस में आगे था। एल्जिब्रा जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, एल्जिब्रा ब्रह्मगुप्त की देन है, जो गुप्त काल में ही इसका निर्माण हुआ था, उसके पहले भी था। तो एल्जिब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स, जो कुछ चीजें देख रहे हैं उसकी ओरिजिन कहां से हुई? भारत देश से। और बहुत से आजकल की सभ्यता लोग समझते हैं कि सारी चीजें फॉरेन से आती हैं, जी नहीं, सारी चीजें भारत देश से ही जो है विदेशों में गई। एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं गुप्त काल का, इसके बाद हम कलयुग के इतिहास की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे महमूद गौरी जो है सोमनाथ टेम्पल का इंसिडेंट। बट इसके पहले थोड़ा सा एक स्लाइड देखेंगे गुप्त काल का।
So what was India like in the Gupta age? Let's go back now to the world at the time of the fall of the Roman Empire. The 5th century AD was an age of migrations and wars. The Huns swept out of Asia from the Great Wall of China to the gates of Rome. This was the time when the Gupta kings created their empire. This part is known as the Middle Land, he says. Climate is temperate. The cities and towns are the greatest in India. The people do not kill any living creature. Fasien depicts India as a pluralist and tolerant country where Buddhism thrived along with the Hindu religions. What he doesn't mention are the extraordinary artistic productions of Gupta civilization, like the gold coins of the kings, holding the golden bow of Rama. Or the wonderful sculpture created by Gupta artists for all religions. Nor does Fasien mention the Gupta's technological achievements. The most mysterious, a 35-foot iron pillar, which stands in Delhi today. And the inscription on it dates it to about 400 AD, centuries before the Chinese developed their iron technology, 1500 years nearly before the Industrial Revolution. And the leap was in all fields. After defeating the Huns, the Gupta kings made their court a center of high culture, drama, and literature. But some of the most remarkable achievements of their age were in science. Just like today, the ancient Indians were brilliant mathematicians. Gupta scientists pioneered the use of zero, the foundation of all modern mathematics. It was a Gupta astronomer in around 500 AD who proved the Earth went round the Sun. His name was Aryabhatta. More than anybody else in the Gupta age, Aryabhatta gives us an idea of the incredible breadth of intellectual speculation going on here in India at the time of the barbarian invasions and fall of the Roman Empire in the West.
तो द्वापर युग में हम कहां पर होंगे, किसके राज्य में? विक्रमादित्य के राज्य में। जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की ऑलमोस्ट वही हायरार्की वहां पे भी रिपीट होगी, क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में जिक्र किया है कि चढ़ेंगे भी साथ साथ तो उतरेंगे भी साथ साथ। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मैंने पढ़ा कि विक्रमादित्य के राज्य में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, और बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। ये आश्चर्य का विषय है। खैर, और भी वीडियोस है, लेकिन वीडियोस हम थोड़ा सेशन कम करेंगे। अब हम जिक्र करेंगे द्वापर युग की समाप्ति की। द्वापर युग के सबसे लास्ट राजा थे राजा हर्षवर्धन। उनके वीडियोस वगैरह हम देखेंगे नहीं, क्योंकि समय जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कलयुग का इतिहास, कैसे इसमें भारत का पतन हुआ और क्या क्या फैक्टर थे। द्वापर युग के बारे में बता दूं, जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं उनके चरित्र, उनके मूल्यों के कारण द्वापर युग टिका हुआ था। अब शुरुआत हो रही है कलयुग की, और कलयुग की शुरुआत कब हुई? एडी 750। और आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के हर संगम पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती हैं। द्वापर और कलयुग के संगम पर भी ऐसा ही हुआ। यहां पे तीन घटनाएं घटित होती हैं, तीन घटनाएं। पहला, जब कलयुग की शुरुआत हुई तो इस्लाम धर्म की भी शुरुआत हो गई। इस्लाम धर्म बहुत आगे बढ़ रहा था। जब कलयुग की शुरुआत हुई तब बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, क्योंकि द्वापर युग बौद्ध धर्म का युग था। बौद्ध धर्म अपने पतन के कगार पे खड़ा था। कलयुग की शुरुआत में राजपूत काल की भी शुरुआत हुई। राजपूतों की भी शुरुआत कहां से हुई? कलयुग काल में ही दिखाई देती है, कलयुग की शुरुआत में। अब एक एक करके हर एक का जिक्र करेंगे। सबसे पहले कहते हैं राजपूत काल की। संस्कृत में राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र, और पहले राजस्थान का नाम हुआ करता था राजपुताना। राजपूत मानते हैं कि राजपूतों के प्रमुख वंश जो है, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से, यज्ञ कुंड से। चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहार, ये चार वंशों की उत्पत्ति बताते हैं वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से हुई। और आपको आश्चर्य होगा कि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहां पर है? आबू पर्वत पर है, वहां पे है। ये काल्पनिक सिंबल के रूप में बताया गया, कोई सच में कोई उत्पत्ति नहीं होती वहां पे। यहां तक मेंशन किया गया है कि सूर्य वंश और चंद्र वंश की उत्पत्ति भी वशिष्ठ के आश्रम से हुई, और आपको मालूम है वो कहां पर है? आबू पर्वत पे ही है। तो कितने आश्चर्य की बात है, सारी चीजें कितनी मैच करती हैं। राजपूत काल की बात करें तो लगभग 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक, 700 से लेकर 1200 वर्ष तक भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स बने भारत में तभी बने थे। द्वापर युग में इतने टेम्पल्स नहीं बने थे। कलयुग शुरुआत में बहुत सारे टेम्पल्स बने थे। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के समय का पूरा धन भारत में इकट्ठा हो गया था, पूरा धन इकट्ठा हो गया था। लोग विलासी हो गए थे, जात पात का भेदभाव भी शुरू हो गया था, उसका भी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र हम देखेंगे। और यहां पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। चलिए एक वीडियो देखते हैं राजपूतों के बारे में। ये कोई डाउट नहीं है कि राजपूत जाति बहुत वीर थी, पावरफुल थी, लेकिन उनमें अभिमान और वासनाएं भी इतनी भरी हुई थी जो भारत के पतन का कारण बनी। और दूसरी हम चर्चा करेंगे, वीडियो दिखाएंगे इस्लाम धर्म के बारे में, कि जिस समय यहां पे राजा हर्षवर्धन का राज्य था उस समय विदेशों में मोहम्मद पैगंबर मुस्लिम धर्म की स्थापना कर रहे थे। आपको ज्ञात रहे मुस्लिम धर्म अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। तो यहां पर जो बताते हैं मोहम्मद पैगंबर आए, और मोहम्मद पैगंबर के देहांत के बाद मुस्लिम धर्म दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगा। एशिया, अफ्रीका, बहुत सारे महाद्वीप को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तब इंडिया के लोग क्या कर रहे थे? मंदिर बना रहे थे, ऐशो आराम में मस्त थे। तो आइए हम देखते हैं छोटा सा वीडियो। इसमें वीडियो में दिखाया गया है उस जमाने का अरब, उस जमाने में अरब कैसा था और काबा कैसे था। आपको ज्ञात रहे काबा की स्थापना इब्राहिम ने की थी द्वापर युग में, और 1000 वर्ष के बाद मोहम्मद पैगंबर आए। तब तक क्या हुआ था? काबा में बहुत सारी मूर्तियां आ गई थी। बताते हैं कि काबा में 360 मूर्तियां थी, उसमें अधिकतर मूर्तियां देवियों की थी। तो यहां पे जो देवियां बैठी हैं उनकी यादगार में सारी मूर्तियां थी। लेकिन मोहम्मद पैगंबर ने फिर क्या किया? उसने यही संदेश दिया कि गॉड इज वन। उन्होंने फिर मूर्तियों को तोड़कर केवल संगे अश्वत्थ को उन्होंने टच नहीं किया, उसको उन्होंने चूमा। बताते हैं कि मोहम्मद पैगंबर के समय मक्का का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बहुत सारे ट्राइब्स जो थे आपस में फाइट करने लगे कि सबसे पहले इस पत्थर को कौन यहां से हटाए। तो मोहम्मद ने सोल्यूशन दिया, सबने चादर पकड़ी, और चादर में क्या किया गया? शिवलिंग को रखा गया, काबा के पत्थर को रखा गया। तभी यह टच हुआ था। काबा के पत्थर का जो बताते हैं उसकी शुरुआत इब्राहिम ने ही स्थापित किया था और एक रिसर्चर होकर गए हैं जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत बुक लिखी है। उस बुक का रेफरेंस जगदीश भाई ने भी लिया है। उसका नाम है द ब्लंडर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पीएन ओक। उसमें इस बुक पर बैन लग गई थी इंदिरा गांधी के जमाने में। इस बुक के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि काबा बहुत पहले शिव का मंदिर था। उसके बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी मस्जिद की परिक्रमा नहीं की जाती है लेकिन काबा की परिक्रमा की जाती है। 7 बार लोग परिक्रमा करते हैं, सर्कम्बुलेशन करते हैं। दूसरा, जब भी मुस्लिम हज करने जाते हैं तो वहां पे अनस्टिच क्लोथ, बिना सिलाई किया हुआ कपड़े का यूज करते हैं जो भारतीय परंपरा के तहत आता है। सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिला हुआ, जैसे धोती वगैरह कैसे पहनते हैं, और मुंडन भी करते हैं। मुंडन कहां की प्रक्रिया है? भारतीय सभ्यता की है, वो भी किया जाता है। तो आपको सिर्फ तब के जमाने का मक्का बताएंगे और कैसे मोहम्मद पैगंबर आते हैं और अरब जो है आक्रमण करते हैं और विश्व के बहुत सारे कोनों को जीत लेते हैं। तो देखते हैं छोटा सा वीडियो। ये मूवी जल्दी मिलती नहीं है। इट इज बीन टेकन फ्रॉम द मूवी द मैसेज।
हजरत ईसा के 600 साल बाद भी दुनिया तारीकी में भटक रही थी और सरजमीन अरब तो पूरी तरह जहालत और गुनाह के अंधेरों में गर्क थी। ये उसी जमाने का मक्का है, मक्का जहां कभी इब्राहिम ने दुनिया के बुतकदों में अल्लाह वाहिद यानी सिर्फ एक माबूद की इबादत के लिए पहला घर बनाया था। अल्लाह का वो घर अब 360 अरब कबीलों के 360 खुदाओं के मस्कन में बदल चुका था। मक्का जहां लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए नस्ल दर नस्ल खून के दरिया बहाए जाते थे, जहां औरत सिर्फ अय्याशी का सामान थी जिसका अपनी जिंदगी पर कोई हक न था। औरत न तो माँ बाप की जायदाद की वारिस समझी जाती थी, न कोई ऐसी शय जिसे इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाए। मक्का कारवानों की मंजिल और तिजारत की एक बड़ी मंडी था। ये अरब जाहिल थे, झूठे खुदाओं की इबादत करते थे, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज थे, लेकिन साथ ही मेहमान नवाज भी थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ु में कोई कसर नहीं छोड़ते थे।
हमारे खानदान में जन्म लेना था मोहम्मद को, क्यों आखिर?
तुम जानती हो मेरा भतीजा कैसा है।
आखिर तुम उसको रोकते क्यों नहीं?
हो सकता है वो सुधर भी जाए।
खाक सुधरेगा, 40 का तो हो गया है। उस जैसे बहादुर आदमी को लेन नहीं देता कि सबसे कटकर जा बैठे गार में। छोड़ दे नर्म मुलायम बिस्तर और सोए खुरदरी पहाड़ियों पर।
काबा के अंदर
जबकि उसकी बीवी खतीजा मक्का की सबसे मालदार औरत है, भला क्या नहीं मिल सकता उसे मक्का में?
क्या जरूरी है कि वो उज्जा को गुस्सा दिलाए, मनात को गुस्सा दिलाए जो खुशहाली का खुदा है, और लात शराफत और बुजुर्गी का खुदा, और हुबल हमारा रहनुमा, हमारे काफिलों का रखवाला।
इसी तरह के लोग तो बर्बादी को दावत देते हैं।
वो सरेआम खुदाओं को बुरा कहता है, इसमें खतरा है, बुराई है,
गुरूर है, सरकशी है।
मुझे डर है मोहम्मद अपनी जान से न जाए।
उस जमाने का काबा। मोहम्मद आर्मी बनाते हैं और काबा को फिर कैप्चर करते हैं। मोहम्मद के देहांत के बाद अरबों ने बहुत सारा हिस्सा कैप्चर कर लिया दुनिया का। को कैप्चर कर लेते हैं। पूरे पर्शिया को कैप्चर कर लेते हैं और धीरे धीरे इंडिया के बॉर्डर पर आते हैं। कलयुग की शुरुआत की घटनाएं थी और उस समय भारत में मंदिरों का निर्माण का कार्य भी चल रहा था। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो मंदिरों के निर्माण का। आपको बताया कि ये चार ईसा मसीह के 700 से लेकर 1200 वर्ष तक खुजराहो के मंदिर, दिलवाड़ा टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर, जितने भी भारत के प्रमुख मंदिर है ये 400 वर्ष के अंदर ही उसी फेज में बने थे। देखते हैं छोटा सा एक वीडियो।
In 1838, an English explorer, hacking his way through dense Indian jungle, discovered these beautiful temples. But as he got closer, he was appalled by what he found. Temples which even today are shrouded in secrecy.
Their capital still stands today, Tanjore in Tamil Nadu. At its heart, the temple of the creator of the empires. Brilliant statesmen, builders and artists, the Cholans have been called the Athenians of India. And what's so extraordinary is that their civilization is still alive today.
Over time, Rajaraja's temples became larger and larger. This one is so vast that more than 200 Taj Mahals could fit comfortably within its walls. The lingam is the symbol of one of India's most powerful and popular gods, Shiva.
Like all empires, the Cholan state used violence. They conquered the whole of South India and sent their fleets to Indonesia. The temple carries inscriptions to 30 royal regiments, and on its walls, even the images of the gods are warlike.
South Indian temples. राजा एक राजा था जो शिव का बहुत भक्त था। उसने बहुत बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था। उसने लोग हाथी का प्रयोग करते थे पत्थरों के लिए।
In modern times, Rajaraja's reign has come to be seen as a Tamil golden age, celebrated in novels, plays, and in movies. Indeed, in the civil war in Sri Lanka, the Tamil rebels have even modeled their oaths of loyalty on those of the Cholan army.
तो ये कलयुग की शुरुआत की कुछ घटना है और उस समय राजपूतों का भी वर्चस्व काफी बढ़ रहा था। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। यस अभी हम आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ मुख्य घटनाओं को कवर करते हैं। सिर्फ मेन घटनाओं को हम कवर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की, क्योंकि बाबा बार बार मुरलियों में इसे याद करते हैं। तो देखते हैं उस समय का भारत की दशा क्या थी। थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत में कभी आक्रमण किया था। ये समय यहां पे दिखाया गया है 1025 में यहां पर। उसके पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, महमूद गजनवी के समय जो है एक विद्वान आया था और उसने भारत की दशा का वर्णन किया है। और उसने क्या बताया कि भारत के लोग जो है समझते थे कि हमारे जैसा कोई राजा, हमारे जैसा कोई राष्ट्र, हमारे जैसा विज्ञान किसी भी देश का नहीं है। वो घमंड में एकदम आते हुए थे। उनके पास पैसा बहुत है और हिंदू लोग अपने बच्चों को मुसलमान के नामों से डराते थे। जैसे पहले कहते हैं ना कि अगर बच्चा तो सो जा, अदरवाइज क्या होगा, अगर सोएगा नहीं तो क्या होगा, कौन आ जाएगा। हाँ, तो गब्बर सिंह पहले नहीं हुआ करता था, मुसलमानों के नाम से डराते थे, और कोई भी सारे मुसलमान या जो विदेशी को जो है अछूत माना जाता था, मलेच्छ माना जाता था, उनके संपर्क में आई हर चीज को जो है लोग अशुद्ध मानते थे। ये वो भारत का सिचुएशन था, जात पात बहुत थी। ऐसे समय पर महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनी के बारे में यहां पे स्पष्ट किया गया है, उसकी राजधानी गजनी थी। और बताते हैं अभी आपको हम सोमनाथ मंदिर का विवरण। इसके पहले जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो पहले सोमनाथ के मंदिर को नहीं लूटा। महमूद गजनी ने पूरे इतिहास में 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसका 16वां आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। पहले बाबा मुरलियों में सोमनाथ के मंदिर को याद करते हैं, लेकिन बाबा ने इसके लिए भी कहा कि उसके पहले भी उसने बहुत सारे मंदिर लूटे। एग्जाम्पल के तौर पर तब के जमाने में सबसे पहले महमूद गजनवी क्या करता है, हिंदू शाही राजा जो पंजाब का राजा था उसको उसने डिफीट किया, उसके बेटे को भी डिफीट किया। नगरकोट मालूम है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला, वहां पे ज्वाला देवी का मंदिर था जहां भक्त बहुत अमूल्य चीजें जो है चढ़ाया करते थे। जैसे ही महमूद गजनी ने आक्रमण किया सभी लोग भाग खड़े हुए, बड़ी सरलता से उसने प्रवेश किया और बहुत सारा लूट का माल ले गया। महमूद गजनवी का भारत पर आना एक एक्सपेडिशन था, प्रोजेक्ट था। हर ठंडियों में क्या करता, भारत में आक्रमण करता और वसंत ऋतु में अपने देश गजनी लौट जाता, उसका शेड्यूल था। मथुरा में भी वो आया, तब बताते हैं कि मथुरा अपने सोने की मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और मथुरा के नगर को देखकर, उसकी शिल्प कला को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महमूद गजनी ये मानता था कि 200 वर्ष तक 100 बिलियन दिनार खर्च करने के बावजूद भी शायद वो ऐसे नगर का निर्माण न कर पाए, पर इसके बावजूद भी क्या हुआ, इसके बावजूद भी उसने उस नगर को आग लगा दी। तो सोमनाथ तो बहुत दूर की बात है, उसके पहले उसने बहुत सारे मंदिरों को लूटा। अब जिस समय महमूद गजनवी बहुत सारे मंदिरों को लूट रहा था तो सोमनाथ के लोग क्या समझ रहे थे, वे अंधविश्वास में माते हुए थे। वे ये मानते थे कि हमारे सोमनाथ को कुछ नहीं होगा, भगवान सोमनाथ उन देवी देवताओं से रुष्ट थे इसके लिए उनका यह हाल हुआ। अंधविश्वास का ठिकाना नहीं, लेकिन इस अंधविश्वास का आधार क्या था, वही पौराणिक कहानियां जो बहुत पहले लिखी गई थी। जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश के राजाओं का राज था और उनकी राजधानी हुआ करती थी अनिलवाड़ा, पाटण जिला में जो है। अब बताते थे वहां की आबादी 1 लाख थी और वो बहुत ही अच्छा ट्रेड सेंटर हुआ करता था, तभी उसने वहां पे आक्रमण किया। आक्रमण के पहले मैं आपको सोमनाथ मंदिर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दूं। सोमनाथ मंदिर में 300 संगीतकार और 300 और बताते 500 नृत्यांगनाएं शिव के मूर्ति के सामने डांस किया करते थे, 300 नाई यात्रियों का मुंडन किया करते थे और करीबन 1000 पुजारी शिवलिंग की पूजा में हमेशा उपस्थित रहते थे। और बताते हैं 10,000 गांव उस मंदिर का मेंटेनेंस संभालते थे, मंदिर का खर्चा 10,000 गांव। और बताते थे कि 56 सोने के खंभे मंदिर में लगे हुए थे, 56 सोने के खंभे, और सोने की एक चैन थी जो 200 मण की थी। एक मण कितना होता है गुजरात में, 20 किलो, तो 200 मण आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस। और उतने किलो की बताते हैं कि सोने की जंजीर थी जिसको खींचने से ही मुख्य पुजारी उपस्थित हो जाया करता था। मुख्य शिवलिंग पर सोने का छत्र लगा हुआ था, रत्नजड़ित छत्र था। और बताते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता था तो 1 लाख के करीबन फरिश्ता एक करके एक ऑथर बताता है कि जब ग्रहण लगता था तो 1 लाख के करीबन लोग मंदिर में उपस्थित हो जाया करते थे। तो आइए आपको ले चलते हैं, छोटा सा एक वीडियो दिखाते हैं सोमनाथ मंदिर का, दो वीडियो दिखाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हम कल्पना कर सकते हैं सोमनाथ मंदिर इससे भी कहीं भव्य था, तो देखते हैं छोटा सा वीडियो सोमनाथ के ऊपर।
देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक है और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर
प्रकृति का जादू।
सोमनाथ का ये मंदिर, यहाँ खुशबू है भक्ति, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की।
मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ उस समय क्या सोमनाथ कैसे था। छोटा सा एक ओवरव्यू, भले हूबहू ऐसे नहीं था, उससे कहीं ज्यादा भव्य था, यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया।
समय न ठहरता है न कभी मुड़कर देखता है, बस रेत की तरह फिसलता हुआ अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाता है। कुछ बदल जाता है, कुछ कभी नहीं बदलता। हम बात कर रहे हैं गुजरात के गौरवशील सोमनाथ मंदिर की।
सारे संसार में मनुष्य ने सबसे पहली पूजा भगवान सोमनाथ की ही की थी। इसी कारण इसे भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
महमूद गजनबी भारत से सीधे सीधे नहीं आया, लेकिन रेगिस्तान से होते हुए आया और गुजरात के लोगों को उसने आश्चर्य में डाल दिया बहुत सारे ऊंटों के साथ। बताते हैं कि उस समय वहां का राजा राणा भीमदेव भाग खड़ा हुआ और एक बताते हैं कि एक जो है दुर्ग में छिप गया। और उस समय क्या हुआ कि मंदिर के अंदर 50,000 शिव भक्त मूर्ति के सामने रो रहे थे। वो इस आशा में थे कि भगवान शिव प्रकट होंगे और क्या कर लेंगे, हमें बचा लेंगे। लेकिन ये बातें उनके मन में कैसे आई थी, यही पुराणों की चमत्कारिक बातों की ये देन है। अब बताते हैं कि भगवान शिव प्रकट नहीं हुए और महमूद गजनी क्या करता है। मुसलमान बताते हैं कि सोमनाथ के इर्द गिर्द किला हुआ करता था, किले की दीवार थे। मुस्लिम लोगों ने क्या किया कि सीढ़ियों के द्वारा अंदर एंट्री की और बताते हैं कि 50,000 लोगों का कत्ल हुआ। पुजारी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सोमनाथ के मूर्ति को न तोड़े, लेकिन महमूद गजनी ने खुद अपने हाथों से सब जेवर निकाले और अपने हाथों से उसने शिवलिंग को तोड़ा और वहां के पत्थर को बताते हैं फ्राइडे मॉस्क मस्जिद में जो क्या वहां की मस्जिदों की सीढ़ियों में उसने जो उसको लगवाया, ऐसे कहते हैं। और इन सब चीजों के पीछे कारण क्या था, इस पतन के पीछे क्या कहेंगे, भारतवासियों का अंधविश्वास, बहुत बड़ा अंधविश्वास जो उन्हीं शास्त्रों से उन्हीं पुराणों पर आधारित था। आइए देखते हैं छोटा सा एक वीडियो, आप देखना चाहेंगे महमूद गजनी को कैसे था। छोटा सा एक वीडियो देखते हैं महमूद गजनी का।
हिंदुस्तान, इतिहास गवाह है कि इस जमीन पर खून की खुराक से ही सल्तनतें पनपती रही हैं। सन 1011 से कितनों ने ही वक्त वक्त से लूट कर इस फूल को अपने कदमों तले होता है।
सुल्तान हजरत, अल्लाह ताला के फजलों करम से हुजूर सुल्तान अमीर महमूद की बहादुर फौज ने कश्यपपुरा के बादशाह का गुरूर ठोकरों में मिला दिया। और कश्यपपुरा का मगरूर बादशाह पद्मपाल वहम की भीख मांगने के लिए हुजूर के कदमों में हाजिर है।
राजा पद्मपाल यानी बेपनाह दौलत का महाफिज आज अपनी ही सरजमीन पर एक हकीर कैदी की तरह मां बदौलत के सामने तंग कर खड़ा रहने की जरूरत कर रहा हूं।
एक नृशंस क्रूर भीड़ यदि किसी को कुचल दे तो न कुचलने वाला विजय कहलाता है न कुचला जाने वाला पराजित।
हमें तेरा ये बेबाक अंदाज पसंद आया। हम गजनी के अमीर महमूद हैं फाते आलम गजनवी।
फाते आलम संसार पर विजय चक्रवर्ती सम्राट करते हैं तो जैसे लुटेरे नहीं।
हमें गुस्सा पीना आता है पद्मपाल लेकिन किसी बदनसीब की बेबाकी हद से बढ़ जाए तो हम उसे नाफरमानी समझते हैं। क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं हमारा लश्कर हिंदुस्तान के जिन जिन नाफरमान रियासतों से गुजरा है वहां के शहरों और कस्बों को खुली हुई कब्रों का कब्रिस्तान बनाकर गिद्धों के हवाले कर दिया। ये कोई इंतकाम या गुस्से का इजहार नहीं था बल्कि खूब सोच समझकर ठंडे तरीके से लिया गया फैसला था क्योंकि ये हमारे मंसूबे का एक हिस्सा ताकि हिंदुस्तान के हर नाफरमान बादशाह के दिलों में ही नहीं रूह में भी महमूद गजनवी का खौफ कपकपी पैदा कर दे।
भय अपनी सैन्य शक्ति के मद में चूर व्यक्ति ही विवशता को भय कहता है। अरे साहस है तो एक बार इन बेड़ियों को खोल के देख। तेरा दम और अहंकार ठोकर से निकली हुई धूल की तरह मिट्टी में न मिला दू तो बेकार है राजा पद्मपाल के।
बस 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 तू हमें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए। खैर हम फिर भी तेरी जान बख्श सकते हैं अगर तू इस्लाम कबूल कर।
खून की नदियां बहाने वाला एक लुटेरा अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे संसार का हर धर्म मानवता के साथ साथ दूसरों को मान सम्मान के साथ जीने की सीख देता है। क्यों अपने धर्म को कलंकित कर रहा है तू? क्या तेरे धर्म गुरु जी
गजनवी हमारे महाराज स्वाभिमान को कुचलने के लिए बर्बरता की सारी सीमाएं तोड़ दी।
जब इस छोटी सी रियासत की मामूली सी औरतें इतने देवरों से लदी हों तो सोमनाथ के मंदिर में कितने जवाहरात होंगे। हमारे गजनी के हर खजाने से बड़ा खजाना तो सोमनाथ के मंदिर में है। इंशाअल्लाह हम फिर वापस हिंदुस्तान आएंगे। सोमनाथ तुम्हारी बेपनाह दौलत का सही वारिस अमीर महमूद गजनवी है। गजनवी आऊंगा आऊंगा जरूर आऊंगा इंतजार करो हमारा।
सोमनाथ के मंदिर के पीछे पतन का कारण क्या था? क्या कहेंगे? एक तो अंधविश्वास, दूसरा कई पूछते हैं कि गीता का भगवान शिव हो या कृष्ण हो क्या फर्क पड़ता है। अगर महमूद गजनवी को मालूम होता कि गीता के भगवान कृष्ण नहीं लेकिन वही निराकार शिव है तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। इसलिए बहुत बड़ा विषय है। दूसरा जिस समय महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तब यहाँ का राजा राणा भीमदेव मंदिर की देवदासी पे फिदा हो गया था और पुजारी भी उसी देवदासी को जो है पसंद करता था और उनकी पवित्रता भी गई। इसके बारे में जगदीश भाई ने भी एक लेख लिखा है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो काम वासना ही जो है भारत के पतन का कारण बनी। ऐसे और भी अन्य कहानियां हैं लेकिन हम इतने विस्तार में नहीं जाएंगे, कुछ मुख्य घटनाओं को ही कवर करेंगे क्योंकि समय काफी चला जाएगा। जैसे कि सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं तो यहां पे दिखाया गया था सोमनाथ, ठीक उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान की कथा भी आती है, आप सबको मालूम होगी पृथ्वीराज चौहान की, वो भी वीडियो है लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि समय जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का भी यही हाल हुआ, महमूद गजनी के 100 वर्ष के बाद गौरी ने आक्रमण किया। गौरी ने जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान पहली तराइन की लड़ाई जीत गया, लेकिन दूसरी लड़ाई में क्या हुआ, क्यों हारा, क्योंकि बताते हैं जयचंद उसने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह रचा था और पृथ्वीराज को इन्वाइट नहीं किया। पृथ्वीराज क्या करता है, संयोगिता का अपहरण कर लेता है और इस अपहरण के कारण क्या होता है, जयचंद क्या करता है, मोहम्मद गौरी को फिर से इनवाइट करता है। गजनवी अलग है, महमूद गजनी अलग है, मोहम्मद गौरी अलग है और इनवाइट करता है और फिर युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान भी हारा और जयचंद भी, दोनों के दोनों हार जाते हैं। उसके वीडियो से देखेंगे नहीं क्योंकि समय जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की कहानी थी लेकिन कारण क्या था, बताते हैं कि लड़ाई लगी थी 1191 में, पृथ्वीराज जीत गया और 1192 में हार जाता है क्योंकि एक वर्ष के अंदर वो तैयारी करने के बजाय संयोगिता के साथ काम वासना में डूबा हुआ था, ये बात सबको मालूम है। तो भारत के इतिहास के पतन का कारण क्या बना, काम वासना। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि ज्ञान चिता पर के बदले काम चिता पर चढ़कर भस्मासुर बन गए हैं, तो भारत के पतन का मुख्य कारण था। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद, इस कथा के बाद जो है आगे कहानी बढ़ती है, फिर उसके करीबन कुछ वर्षों के बाद अलाउद्दीन खिलजी भारत में आया। आपको अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कथा अच्छे से मालूम होगी, बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की खूबसूरती का वर्णन सुनकर उसको कब्जा कर लेता है, घेर लेता है और डिमांड कर घेरने के बाद भी कुछ होता नहीं है, फिर क्या करता है, वह एक चाल चलता है और कहता है कि वे रानी पद्मिनी को अपनी बहन मानता है, सिर्फ एक बार उसकी झलक देखना चाहता है। तो राणा रतन सेन क्या करता है, उसको बताते हैं कि उसको महल में ले जाता है, सिर्फ पानी में उसका एक झलक दिखलाता है और जब वो गेट पर अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, राणा रतन सेन को कैप्चर कर लेता है। इस बहाने ताकि उसको छुड़ाने के लिए कौन आएगी, रानी पद्मिनी। गोरा और बादल दो वीर पुरुष क्या करते हैं, रानी पद्मिनी का वेश धारण करते हैं और बताते हैं कि हम एग्री करते हैं जाने के लिए और वो राणा रतन सेन को छुड़ा लाते हैं, उसके बदले बेचारे शहीद हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है, 100 वर्ष के बाद बताते हैं कुछ वर्ष के बाद फिर से आक्रमण करता है और चारों ओर से किले को घेर लेता है। जब वो किले को घेर लेता है तो किले की रसद समाप्त हो जाती है, राजपूत क्या करते हैं, केसरिया वस्त्र पहनते हैं और फाइनल अटैक करते हैं और महल की जितनी भी रानियां थी वो क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं। उसका भी एक छोटा सा वीडियो है, 2-3 मिनट का, नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे ठीक है, देखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे।
रत्ना कराधौत पदाम हिमालय क्रीटिनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाड्याम नमन भारत मातरम। 13वीं शताब्दी का हिंदुस्तान शताब्दी के पूर्वार्ध में अलाउद्दीन खिलजी की आग में बुरी तरह से झुलस रहा था, फिर भी राजपूताना के राजपूतों ने मरते दम तक खिलजी के सामने घुटने नहीं टेके। अलाउद्दीन खिलजी से टकराने वाला कोई राजकुमार या राजा नहीं था, वो थी एक नारी शक्ति, एक ऐसी नारी शक्ति जिसने खुद खाक में मिलकर अलाउद्दीन के संपूर्ण अस्तित्व को खाक में मिला दिया, जिसने राजपूताना के राजपूतों का मान हिमालय से भी ऊंचा कर दिया, उसने हिंदुस्तान की संस्कृति, अपना मान और कुल की मर्यादा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हिंदुस्तान के इतिहास की वो महान स्त्री थी पद्मिनी, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी।
अलाउद्दीन खिलजी
حضرت بلند مقام کی خدمت میں غلام کا آداب عرض ہے۔
ملک کفور، اپنے محل کا دروازہ کھول کر ہماری داستان سویکار نہیں کی، یا ہماری پناہ میں نہیں آیا تو اس کے بعد ہمارے ہاتھوں جو ہوگا اس کا ذمہ دار با خدا خود ہوگا۔
رانا رتن سنگھ،
بہت سوچ وچار اور منترنا کے پشچات ہم سب اس نرنے پر پہنچے ہیں کہ آپ اپنی بہن پدمنی کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، پرنتو آپ پدمنی کو سامنے سے نہیں دیکھ سکتے۔
ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم تو بس اپنی بیگم کی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔
اور آپ کو ان کی جھلک پوری طرح سے دیکھنے کو ملے گی، جیسے آپ کے یہاں پردا پرتھا ہے ہمارے یہاں پرتیبم پرتھا۔
مہاراج کمار، آپ نے ہماری خواہش کی قدر کی، اس کے لیے تہ دل سے شکریہ۔
क्षत्रियों ने जिस हृदय से अपने अतिथि का आदर सत्कार किया है, अगर अवसर आया तो उसको उसकी करनी का दंड भी दिया है। आज वही अवसर आया है जब चित्तौड़ का मान और हम क्षत्रियों की मर्यादा दांव पर लगी है। एक अफगानी ने हमारी पत्नी चित्तौड़ की बहू पर बुरी नजर डाली है, ये हम क्षत्रिय कभी सहन नहीं करेंगे। ये हम क्षत्रियों के लिए लज्जा से डूब मरने वाली बात होगी। आज वो समय आया है कि हमें हमारी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करना है। इस चित्तौड़ की आन मान और शान के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। बोलो माँ काली की, बोलो बाबा भोलेनाथ की।
मन में करुणा है, प्यार है, तेरी लाज तेरा है,
तेरी शूरता
तू है अपने वचन।
کے نام کا پرچم جس روز سے علاؤالدین افغان سے چلا تھا، ہر قدم پر کامیابی نے اس کی قدم بوسی کی۔ اس کے نام کا پرچم پورے ہندوستان میں لہرا ہے، پر جس خاتون کا خواب ہم نے دیکھا وہ ہمارے لیے شرمندہ تعبیر بن کر رہ گیا۔ راجپوتانہ میں آ کر علاؤالدین ہار گیا، پر تم نے علاؤالدین کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پروردگار کی سیاہی میں عظیم طاقت ہے۔ اس کا لکھا یہ علاؤالدین تو کیا کائنات کی کوئی بھی طاقت نہیں بدل سکتی۔ आज तुम्हारे जज्बे और हिम्मत के आगे ये अलाउद्दीन तह दिल से आज तुम्हारा सजदा करता है और कबूल करता है कि तू जीत गई।
ये थी रानी पद्मिनी की कहानी। पर लोग इतिहास का एक फैक्ट को भूल जाते हैं कि रानी पद्मिनी जैसे रानी होने के बावजूद भी राणा रतन सिंह के पास और भी बहुत सारी रानियां थी। तो राजपूतों के हारने का कारण क्या था? इसमें कोई डाउट नहीं कि राजपूत बहुत वीर थे, लेकिन एक तो अहंकार और दूसरी काम वासना और तीसरी ईर्ष्या, ये सब कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत देश का ये हाल किया। समय आगे निकलते गया और फिर शुरू हुआ भक्ति काल। तो हम भक्ति काल में मुख्य जो है मीरा का ही देखेंगे, सबका नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जो है भक्ति काल दिखाया गया है। भक्ति काल की शुरुआत हुई करीबन आज से 500 वर्ष के आसपास देखा जाए तो। मीरा, अकबर सब समकालीन थे, तुलसीदास एक ही टाइम पे हुए हैं, सबके सब एक ही टाइम पे हुए हैं। बताते हैं कि इसमें सबसे मुख्य लड़ाई हुई थी वो है पानीपत की लड़ाई, आप सभी जानते हैं। और पानीपत की लड़ाई में कौन जीता? अकबर। अकबर और उसके विरुद्ध था हेमू। हेमू बहुत बड़ा राजा था, वो जीत सकता था, उसकी सेना डबल थी, लेकिन उसका भी वही प्रॉब्लम, अभिमान, ओवर कॉन्फिडेंस और वासना। तो छोटा सा एक वीडियो देखेंगे पानीपत का, फिर मैं भक्ति काल का दिखाऊंगा और लास्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर इन द सेंस न्यूक्लियर वेपन्स का दिखेंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये हम देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत कहां पर है आप सब जानते हैं, दिल्ली में है। तो छोटा सा एक ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। और देखिए ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि लोग चाहते भी जीत नहीं पाते क्योंकि ड्रामा की घटनाएं कुछ ऐसी है। तो देखते हैं एक छोटा सा युद्ध, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं भक्ति काल। पानीपत का जब युद्ध हुआ, बताते हैं कि मुस्लिम बहुत आक्रमण कर रहे थे भारत देश में, ये भक्ति का समय था। हम आपको ले चलते हैं आज से 500 वर्ष पहले का भारत, भारत की दशा क्या थी। तो भक्ति काल में सिर्फ हम मीरा का ही देखेंगे शॉर्ट वीडियो, उसके पहले आज से 500 वर्ष पहले का भारत।
जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्।
कबीर भी तभी हुए थे। बनारस के घाट का वीडियो है ये। अब ब्रीफ में हम मीरा का एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें पूरी मीरा की कहानी एक छोटे से वीडियो में आ जाती है, क्योंकि मीरा द्वापर युग में हुई थी। अब बाबा भी कई बार मुरलियों में याद करते हैं। तो छोटा सा एक वीडियो देखेंगे। कलयुग द्वापर नहीं, कलयुग क्या कहेंगे। मीरा आज से 500 वर्ष पहले कलयुग में हुई थी। ये रहा छोटा सा एक वीडियो ऑन मीरा। थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करते रहूंगा बीच में।
जन्मी मीरा रतन सिंह राठौड़ की बेटी थी। 5 साल की उम्र में एक बारात को देख नन्ही मीरा ने अपनी माँ से पूछा था कि मेरा दूल्हा कहाँ है। और माँ ने कृष्ण की मूर्ति को दिखा मीरा से कहा था, यह कृष्ण ही है तेरा दूल्हा। उस दिन से मीरा ने कृष्ण को ही अपने मन में बसाया।
मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के बड़े बेटे भोजराज से। जैसे ही घर के कामों से समय मिलता मीरा कृष्ण की मूर्ति के आगे गाती और नाचती।
मीरा आम लोगों के बीच हर रोज भजन गाती
और मीरा के भजनों की गूंज दिल्ली दरबार में भी पहुंची।
तानसेन, मीराबाई के कृष्ण अनुराग में भीगे भजन सुनने की इच्छा हो रही है, तो साहस करेगा तानसेन।
और संगीत के महान रसिक अकबर और महान गायक तानसेन मीरा के भजन सुनने पहुंच ही गए।
फॉरवर्ड करेंगे थोड़ा सा।
जिस कष्ट प्रेम में आप इतनी डूबी हैं, उस कष्ट के नाम पर इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए।
फिर ये भेंट आप उसे ही दे जिसके नाम पर आप देना चाह रहे हैं। आलीरी
मेरी मृत्यु हो गई और फिर मीरा के ससुराल वालों ने मीरा को तंग करना शुरू किया, कभी जहरीला सांप तो कभी जहर, पर मीरा का बाल भी बाका न हुआ।
सुतु था, फिर मीरा ने क्या किया?
अपने ससुराल वालों से तंग आकर फिर मीरा ने अपने समय के महान संत गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखा।
स्वस्ती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, घर के स्वजन हमारे जे
तुलसीदास
लिख देता हूं। जी बाबा।
जाके प्रिय नराम वैदे ओटी बैरी सम।
और तुलसीदास जी ने सगे संबंधियों को छोड़ देने की सलाह दी।
तामसिक और राजसिक लोगों की संगत छोड़ देनी चाहिए, कोई भी गुणाती यही सलाह देगा।
मीरा के समकालीन सूरदास भी थे। सूरदास आप जानते हैं कि किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के। उनका भी एक वीडियो है, हम वो वीडियो देखेंगे नहीं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखना चाहेंगे, देखेंगे क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है और सारा वीडियो कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण घटना वो हुई कलयुग अंत की। ऐसे कलयुग चलता गया, भक्ति चलती गई, बहुत सारे मठ और पंथ भारत में आते गए, भक्ति का विस्तार होते गया, लेकिन लोगों का पतन जारी था। अब समय आया कलयुग के एंड का और इसमें दिखाया गया है कि कलयुग एंड में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी घटना थी हिटलर के द्वारा नाजियों का कत्ल। हिटलर क्या करता था कि उसने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जर्मनी में चलाए और बहुत से लोगों का खुलेआम बताते उसने कत्ल करना शुरू किया। गैस के चैम्बर्स में लोगों को डलवाया जाता था और कड़ाकी ठंड में लोगों के कपड़े उतार लिए जाते थे, फीमेल्स के बाल काट करके मिलिट्री का कोट बनाया जाता था। तो इतना आतंक का समय था वो 1930s का। तो सिचुएशन ऐसी कुछ थी ड्रामा अनुसार जो बाध्य करे परमात्मा अवतरण को। तो ये कुछ जस्ट वीडियो क्लिप दिखाए गए तब के जर्मनी के क्या था, और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स, डार्विन, सिगमंड फ्रायड ऐसे बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जिससे पूरे पाश्चात्य जगत का पतन हुआ। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि दुनिया के हर संबंध काम वासना पर आधारित है, तो विदेशी लोग काम वासना को नेचुरल समझने लगे और पूरे पाश्चात्य जगत का पतन हुआ। कार्ल मार्क्स ने भी वही शिक्षा दी लगभग। और ये छोटा सा एक वीडियो देखते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप का, हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इसके बाद एक और वीडियो रहेगा, इसके बाद सत्र समाप्त होगा। तो लेट्स सी द वीडियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑफ हिटलर। हिटलर अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति समझता था। ये रहा हिटलर का छोटा सा स्पीच और वीडियोस।
Will not come to an end the way the Jews imagine, with the extermination of the Aryan people. Instead, it will see the complete annihilation of the Jews. not play at war. I shall not allow myself to be ordered about by generals. With iron will, I shall determine the moment to attack. That is my mission.
आप झंडे पर स्वास्तिका चिन्ह देख सकते हैं।
It is one of over 1,000 of Hitler's concentration camps.
Concentration camps. जहां पे आप लाशों का समूह देखें।
Is one of the few survivors.
The conditions in Buchenwald had reached the height of horror. People were starving. A few of those who could still move broke down and died. There were mountains of corpses. The crematorium and the courtyard were overcrowded with skeletons. I can still hear my dead friends. If you should survive, don't forget to tell the world of our destiny. I will never forget.
I could hardly believe what I was seeing.
ये लाशें रखी गई हैं।
They had piled up the corpses of people who had died.
The Nazis have murdered 6 million Jews.
अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फिर 1930s में आर्थिक मंदी भी थी, सारी समस्या एक साथ थी, और यही वो दशक था जब परमात्मा अवतरण बहुत ही अनिवार्य हो गया था। इसलिए परमात्मा का अवतरण 30s में ही होता है। जगदीश भाई ने एक बुक भी लिखी है, परमात्मा का अवतरण कब और कैसे, उसमें इन सिचुएशंस के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। इसके बाद जो है परमात्मा अवतरण के बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग भी होती है और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किया जाता है। छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, एटम बम कैसे ड्रॉप किया जा रहा है हिरोशिमा पर। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। जापान में लोग अपने अपने दिनचर्या व्यतीत कर रहे थे। बम रिलीज हो चुका है।
After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
ये विमान जिसने बॉम्ब ड्रॉप किए,
bomb delivered its destruction in stages. The flash came from a giant fireball 300 meters wide. Temperatures directly below the fireball were 4,000 degrees Celsius. The heat rays left shadows. Ladders, railings, even people left their outlines on stone and metal. Anyone in the open air was either vaporized or turned to carbon in an instant. At the same time, the flash sent out powerful infrared radiation and gamma rays. These could penetrate walls and attack the cells, and later came a powerful shockwave into shrapnel.
Bomb stages mein blast hota hai, ek hi bar blast nahi hota hai. Ye dikhaya gaya hai. Do दूर से कैसे दिखता है वह दिखाया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अब वीडियोस ना दिखाकर मैं आपको सिर्फ सारांश बताना चाहूंगा कि इन सब चीज का सारांश क्या निकलता है, समरी। आप इतिहास की घटनाओं से देख रहे हैं कि द्वापर युग से क्या हुआ। द्वापर युग में दुनिया फिर भी ठीक थी, और कलयुग में क्या हुआ, 700 वर्ष तक मुस्लिम राज्य और 200 वर्ष तक अंग्रेजों का राज। भारत का पतन होते गया, लेकिन किसी ने भारत के पतन पर ध्यान नहीं दिया। इन सारी घटनाओं का हम सारांश क्या निकालेंगे। सबसे पहली चीज कि भारत अपार धन संपदा का केंद्र था, आपने देखा सारे वीडियोस के थ्रू। भारत जैसा धन किसी भी देश में नहीं होता है। दूसरा, भारतीय संस्कृति द्वापर युग में गिरावट के बावजूद भी सबसे महानतम संस्कृति है। इसकी तुलना हम किसी से भी करें, जमीन आसमान का अंतर है। तीसरा, भारत इस विश्व नाटक का केंद्र बिंदु है। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया रूपी फिल्म है वो किसके ऊपर बनी है, भारत, क्योंकि भारत का कनेक्शन दुनिया के हर धर्म के साथ रहा है। द्वापर की शुरुआत में ईरानियन लोग ने, पारसी लोग ने भारत पे आक्रमण किया। फिर बताते हैं कि बुद्धिज्म कहां पे एस्टेब्लिश हुआ, भारत में। बुद्धिज्म और जैनिज्म का हिसाब किताब भी भारत के साथ। मुसलमानों का भी राज कहां पर हुआ, भारत में। और लास्ट में जब चक्र समाप्त हो रहा था तो अंग्रेजों ने भी कहां पर राज किया। ये इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के सभी धर्म का कनेक्शन भारत के साथ है, तो भगवान का अवतरण भी कहां पे होना चाहिए, भारत देश में होना चाहिए। दूसरा, हमने ये देखा, अभी तो हमने बहुत सारे कम वीडियोस दिखाए, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस या सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे तो काम विकार ही महाशत्रु था जिसके कारण सभ्यताओं का पतन हुआ, ये हम कंक्लूजन पे निकलेंगे। तीसरा, सबसे बड़ी गिरावट कहां पे हुई, धर्म पे। जब धर्म शास्त्र दूषित हुए उससे ही सारे युद्ध हुए और उससे मानवता का पतन हुआ। चौथा, भारत का पतन इसलिए भी हुआ क्योंकि ये ड्रामा में पहले से ही नूंद थी, पहले से ही नूंद था। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए भारतवासियों के पास धन नहीं होता तो बाहर के लोग इंडिया पर अटैक नहीं करते, मुस्लिम धर्म की स्थापना इंडिया में नहीं होती, भक्ति काल नहीं आता, मेरा और हम सभी भक्ति नहीं करते, और आज हम यहां पर नहीं पहुंचते और परमात्मा का अवतरण नहीं होता। तो सारी चीजें ड्रामा अनुसार बनी बनाई है। इसे बाबा मुरली में कहते हैं, दुनिया क्या है, विश्व एक नाटक की तरह है, और ये नाटक भगवान ने नहीं रचा है, ये ईश्वर नियोजित नहीं है, ये विश्व नियोजित है। ड्रामा अपनी घटनाओं के साथ जो है चल रहा है, और बाबा ने सबसे बड़ा सत्य बताया है कि ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। तो इसलिए बाबा ड्रामा की बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो हमने ऐसे करीबन 21 पॉइंट्स निकाले हैं इतिहास के रहस्य। इतिहास जो चलता है एक नियम के अनुसार चलता है, क्या है वो 21 नियम, इस किताब में जो है मेंशन किया गया है, उसका पूरा विस्तार जो है इसमें दिया गया है। तो ये था एक छोटा सा सेशन इतिहास और भूगोल का। ओम शांति।